ओम शांति। अभी हम सबके सामने राजयोगी डॉक्टर सतीश भाई उपस्थित हैं। हम सभी एक हाथ से डॉक्टर सतीश भाई का, ब्रह्मा कुमार सतीश भाई का स्वागत करते हैं। डॉक्टर सतीश भाई अपने आप में बहुत अच्छा योग का अभ्यास करते हैं, और केवल योग के अभ्यास की बात नहीं है, पर बाबा जो कहते हैं राजयोग का प्रयोग, तो प्रयोग के आप विशेष अनुभवी हैं। और बाबा के यज्ञ में एक नया क्षेत्र जिसको कहते हैं, वो आपने हासिल करके बाबा के यज्ञ के बैनर को थोड़ा ऊंचा उठाया है, और वो है जिसको प्रयोग ही कहेंगे, योग का प्रयोग। जो दुनियावी हिसाब से कहते हैं कोरोनरी आर्टरी डिजीज, कैड कहते हैं जिसको, तो उसके ऊपर योग का कैसे प्रयोग करना, वो वैज्ञानिक रूप से आपने प्रयोग किया है और करके प्रूव किया है, जो अभी एक प्रूव्ड पेपर के रूप में भी पब्लिश हो चुका है, जिसको अभी आपने नाम दिया है बीके लाइफस्टाइल। ये बहुत अच्छा शब्द है, बीके लाइफस्टाइल के द्वारा कैसे हम हार्ट डिजीज के अंदर हेल्प ले सकते हैं। तो बाहर वाले भी बहुत अभी इंक्वायरी करते हैं कि कैसे लोग बहुत अच्छे हो जाते हैं। खैर, वो उन सब की बात है, हम सभी बाबा के बच्चे हैं, और भाई साहब ने ही थोड़ा सब्जेक्ट सिलेक्ट किया था। ये भी एक प्रयोग की बात है, राजयोग के द्वारा भी कर्म विनाश कैसे होते हैं, कैसे महसूस होगा कि विकर्म विनाश हो रहे हैं, उन सब बातों के आप अनुभवी हैं। तो इस अनुभव युक्त क्लास को हम सभी सुनेंगे। फिर से एक बार भाई साहब का हम स्वागत करते हैं। ओम शांति।
ओम शांति। हम सभी मीठे बाबा के बच्चे, बाबा के बच्चे बने, क्यों बने, क्यों बने? फरिश्ता बनने के लिए बने ना? नहीं, ब्राह्मण बने, ब्राह्मण क्यों बने? फरिश्ता बन के फिर क्या बनना है? देवता बनना। कि तो ब्राह्मण से फरिश्ता बनने में भी 5 स्टेजेस हैं। पहले तो हमें मनुष्य से ब्राह्मण बनना है, बने। पहले तो मनुष्य से हम ब्राह्मण बने हैं, फिर भी उसमें भी नंबर बार पुरुषार्थ अनुसार बने, और फिर ब्राह्मण बनने के बाद भी फरिश्ता बनने में 5 स्टेजेस हैं। पहली स्टेज है विक्रमाजीत। पहले हमारे विक्रम विनाश, हमें कर्म विकर्मों पर हमारी पूरी जीत हो जाए, हमसे कोई विकर्म ना हो, पहली स्टेज वो है। तो अभी हमारी स्टेज कैसी है? पहले अभी हम विकर्म विनाश भी कर रहे हैं, कि जब हम बीज रूप स्थिति में होते हैं, परम धाम में होते हैं, सुबह सुबह अमृत वेले जब योग करते हैं, कुछ मिनट के लिए 1, 2, 3, 4, 5 डिपेंडिंग ऑन नंबर वार पुरुषार्थ अनुसार, फिर ना कितनी देर हम परम धाम में बीज रूप स्थिति में रहते हैं, वहां हमारे विक्रम विनाश होते हैं। जब बाबा से रूहरिहान करते हैं सूक्ष्मतम में, और वहां विक्रम विनाश नहीं होते हैं, वहां विक्रम होते नहीं है, किंतु विक्रम विनाश भी नहीं होते हैं। मनन चिंतन करते हैं सारे दिन बाबा के ज्ञान का, बाबा ने जो मुरली सुनाई उसको हम बार बार रिवाइज करते हैं, मनन उस पर मनन करते हैं, चिंतन करते हैं, मंथन करते हैं, सिमरण करते हैं, उससे भी हम, उससे हमारे विक्रम विनाश नहीं होते, विक्रम विनाश बीज रूप स्थिति में होते हैं। बाकी जितना दिन, जितनी देर हम मनन चिंतन करते हैं, बाबा को याद रखते हैं, बीच बीच में रिवाइज करते हैं, ट्रैफिक कंट्रोल करते हैं, सुबह शाम योग करते हैं, तो वो उसमें हमारे विक्रम होते नहीं है, किंतु विक्रम विनाश भी नहीं होते। जैसे ही हम थोड़ा सा देह विमान में आके, कोई भी किसी के साथ जरा लगाव में आके, झुकाव में आके, टकराव में आके, किसी के प्रभाव में आके कोई कर्म करते हैं, वो भी विक्रम होता है। आलस के वश करते हैं, चिंता के वश करते हैं, भय के वश करते हैं, जरा किसी से क्रोध में आके थोड़ा बोल देते हैं, किसी को कुछ थोड़ा सा लोभ के वश कुछ कर लेते हैं, मोह के वश किसी के प्रति किसी का फेवर कर लेते हैं, अहंकार के वश किसको हर्ट कर देते हैं, दुख दे देते हैं। आसक्त खाना भी अगर आसक्ति के वश खाते हैं तो वो क्या है? आज खाना बहुत अच्छा बना हुआ है ना, आप नॉर्मली 2 चपाती खाते हैं, आज आपने 3 खा ली, तो क्या है वो क्या है? विकर्म है कि श्रेष्ठ कर्म है? आसक्ति के वश किया ना आपने, स्वाद के वश आके खाया ना, तो विकर्म हो गया नहीं। तो अभी हम विकर्म कर भी रहे हैं और विनाश भी कर रहे हैं। शाम होते होते क्या हालत होती है? अगर शाम पूरा दिन का काउंट देखें तो क्या होता है? विक्रम ज्यादा होते हैं कि विनाश ज्यादा होते हैं? क्या होता है? सारी बात अटेंशन की है ना, अटेंशन की है ना। इसलिए कई बार हम ज्ञान में चल रहे हैं, 20 साल से चल रहे हैं, 25 साल, 30 साल, 35 साल, 40 साल से चल रहे हैं, किंतु स्थिति में परिवर्तन नहीं हुआ है। ज्यादा परिवर्तन तो हुआ है किंतु जितना होना चाहिए उतना नहीं हुआ है। नहीं ऐसे क्या समझते हैं आप? 20 साल पहले भी क्रोध करते हैं, अभी भी क्रोध करते हैं, पहले भी डर लगता था, अभी भी डर लगता है, पहले भी डरावने सपने, खराब सपने आते थे, अभी भी खराब सपने आते हैं, तो क्या स्थिति है? पहले भी बात बात पे कभी रोना आ जाता था, अभी भी रोना आ जाता है, कोई मरता था, कहीं तकलीफ होती था, पहले भी तकलीफ होती थी, अभी भी तकलीफ होती है, तो विक्रम विनाश हो रहे हैं, मतलब हो रहे, थोड़े थोड़े हो रहे होंगे। तो मुझे एक सीन याद आता है, मैं जब ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट मेडिकल साइंस दिल्ली में था, तो मुझे तब तक वो स्विमिंग करना नहीं आता था, तो मैंने स्विमिंग करना शुरू किया, सीखना शुरू किया, तो हमारा कोच होता था ना वहां पर, शुरू आपको पता है नीचे साइड नीचे जाके बहुत गहरा होता है, शुरू शुरू में गहरा कम होता है, वहां एक पाइप लगा होता है, तो शुरू शुरू में वो क्या करते हैं, आपको कहते हैं पाइप पकड़ के आप वहीं पर ट्राई करते रहो, है ना, वहीं पर हाथ पैर मारते रहो, तो बताते हैं कैसे कैसे आपको तैरना। तो हम उस पाइप को पकड़ के तीन चार दिन तक ट्राई किया, फिर एक दिन उसने कहा अच्छा अभी आज हाथ छोड़ के आप ट्राई, आप अभी आप करके देखो। तो मुझे डर तो लग रहा था पानी में, कि पानी में डर तो लगता है ना, पहली पहली बार हम लोग हैबिचुअल नहीं थे, तो मैं आंखें बंद करके मैं हाथ पैर मारने शुरू कर दिया, ऐसे करके मैंने सोचा मैं बहुत दूर चला गया हूँ, आंख खोली तो वहीं था, एक इंच भी आगे पीछे नहीं हुआ हूँ, है ना। तो कई बार हम लोग सीखते तो है किंतु प्रॉपरली नहीं सीख पाते, तो क्या होता है, पुरुषार्थ करते रहते कि तुम वहीं की वहीं खड़े रहते हैं। तो विक्रम विनाश मतलब पहली स्टेज है हमारी, फिर दूसरी स्टेज है कर्मातीत, है ना, कर्म करते हुए कर्म के बंधन से अतीत। अभी तो हम अच्छा कर्म करते तो भी बंधन बन जाता है नहीं, किसी का हम भला करें ना, किसी का भला कर दें, किसी को कुछ दे देते हैं, कुछ चीज देते, तो उसको भी हमसे अटैचमेंट हो जाती है, वो बंधन बना, क्या बना, वो भी तो बंधन, विकर्म बन गया ना, तो वो भी बंधन, अच्छा कर्म भी बंधन बन जाता है, नहीं ऐसा होता है? फिर एक समय ऐसा आएगा जब विकर्म सारे विनाश हो जाएंगे, तो फिर कर्मातीत स्थिति आएगी, अर्थात कर्म करते कैसा भी अच्छा बुरा कर्म, अच्छा बुरा तो करेंगे नहीं, अच्छा कर्म जो भी करेंगे हम, उसका बंधन हमारे ऊपर नहीं बनेगा। कर्म करते कमल पुष्प के समान न्यारे और प्यारे रहेंगे, जैसे मम्मा ने कहा ना, एक स्टेज आपकी अभी सत्व प्रधान बनते जाएंगे, फिर अंत में क्या होगा, कर्म यहां ही, मतलब पहले समझते थे कर्म सत्युग में अकर्म होंगे, नहीं, मम्मा ने कहा लास्ट पेज की तीन चार लाइनों में मम्मा ने कहा ना कि लास्ट में क्या स्थिति होगी आपकी, कर्म यहां ही अकर्म बन जाएंगे, कर्म का प्रभाव आपके ऊपर नहीं पड़ेगा, अंत में आखिरी में ऐसी स्थिति आएगी, राइट। तो दूसरी स्टेज है कर्मातीत, राइट। जब कर्मातीत बन जाएंगे फिर संपूर्ण बनेंगे, फिर हमारी बैटरी चार्ज होने लगेगी तेजी से। अभी हमारी बैटरी चार्ज नहीं हो रही है, हम करते हैं चार्ज किंतु उतनी डिस्चार्ज हो जाती है, चार्ज करते फिर डिस्चार्ज हो जाती है, शाम को फिर वहीं पहुंच जाते, अगले दिन उठते फिर वैसी हालत होती है ना, रोज अमृत वेला वैसा ही होता है जैसे रोज होता है ना, आधा आधा झटके, आधा घुटके और आधा नींद है ना। तो मतलब बहुत सारी चीजें होती है, तो बाबा की याद बहुत कम होती है, और यथार्थ याद जिसे कहते हैं, यथार्थ याद क्या है जिससे विक्रम विनाश होते हैं, यथार्थ याद है निराकारी बाप को निराकारी आत्मा बन के निराकारी घर में याद करना, निराकारी आत्मा बन के निराकारी बाप को कहां याद करना, निराकारी सूक्ष्म वतन में नहीं है ना, कहां पर, सूक्ष्म वतन परम धाम में याद करना, वो है यथार्थ याद, उससे विक्रम विनाश होते हैं। तो वो जो है हमारी स्थिति, मतलब फिर जो है जब तब हमारी स्थिति, जब ऐसी स्थिति कर्मातीत कर्म के बंधन से अतीत हो जाएंगे, तब हमारी बैटरी एकदम से चार्ज होगी, तब हमारा याद कहां हो जाएगी, एकदम से परम धाम वाली याद हो जाएगी, बीज रूप स्थिति वाली याद हो जाएगी, और तुरंत बैटरी चार्ज होगी, है ना, तब हम सत्व प्रधान बनेंगे, राइट। वो स्टेज आने के बाद जब हम संपूर्ण बैटरी फुल चार्ज हो जाएगी, तब हम अव्यक्त हो जाएंगे, अव्यक्त माना तब हमें बोलने की आवश्यकता नहीं होगी, आंखों के इशारे से बात होगी, आंखों की संकल्पों से बातचीत होगी, इशारों से बातचीत होगी, तब बोलना बंद हो जाएगा। तो चौथी स्टेज होगी, और उसके बाद जब ऐसी स्टेज बनने के बाद हम फरिश्ता बन के सेवा कर सकें, तब हम फरिश्ता, तब इस फरश, इस शरीर रूपी फरश से, देह और देह की दुनिया से हमारा कनेक्शन क्या हो जाएगा, हम इससे ऊपर उड़ते रहेंगे। अर्थात हम तब जाकर के किसी भी लगाव झुकाव टकराव प्रभाव से दूर होकर के तब हर आत्मा की सेवा कर सकेंगे। वो स्टेज होगी फरिश्ता। उस स्थिति में हम बाप के साथ वापस घर जाएंगे, और वो स्थिति में हम वापस बाप के साथ घर जाएंगे उसमें भी हम बिंदु बन के घर जाएंगे, राइट। सूक्ष्म तक फरिश्ता स्थिति रहेगी, और उसके बाद फिर बिंदु बन के आत्माएं मच्छर के माफिक बाप के साथ वापस घर जाएंगे। उसमें भी पुरुषार्थ अनुसार, नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार बाप के समीप होंगी, है ना, जाने में भी, और वहां बैठने में भी उसी अनुसार होंगी, फिर वापस आने में भी उसी अनुसार आएंगे, है ना, नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार आएंगे। तो आज हम इसी बात पर गहराई से चिंतन करते हैं। तो पहले तो हम ये डिस्कस करते हैं कि कर्म क्या चीज है ना। कई बार इसमें थोड़ा सा हमें, क्योंकि ज्ञान की जितनी महीनता हमें आएगी ना, महान बनने का आधार है महीनता में जाना, है ना। ऊपर ऊपर से ज्ञान को समझना, योग को समझना, धारणाओं को समझना, उसमें महान नहीं बनते हैं, उसमें सिर्फ प्रजा बन के रह जाते हैं, है ना। प्रजा में बन जाएंगे, साहूकार बन जाएंगे या दास दासी बन जाते हैं, किंतु हम महान नहीं बन सकते। महान बनने के लिए क्या करना पड़ेगा, ज्ञान की, योग की, धारणा की और सेवा की महीनता में जाना पड़ेगा। महीन माना उसको बहुत ही बारीकी से, बहुत ही गहराई से समझना होगा, उसकी गहराइयों में जाना होगा, राइट। तो कर्म क्या है, सबसे पहले कर्म के ऊपर हम जाते हैं। एक तो आपने मम्मा की उस मुरली में भी सुना होगा, वैसे भी हमने समय समय पर बाबा बताते रहते हैं, ये जो सृष्टि है ना, ये जो सृष्टि है, या इवन कहें पूरा खेल जो चल रहा है ड्रामा, इसमें हर चीज के अनादि नियम और कायदे बने हुए हैं। आत्मा के भी कुछ नियम और कायदे हैं, अविनाशी हैं वो, अनादि हैं वो, परिवर्तन नहीं होते हैं, ठीक है। ऐसे परमात्मा के कुछ कायदे हैं, नियम और कायदे हैं, कुछ कब आना है, कैसे आना है, किस शरीर में आना है ना, किस कितना समय उनका पाठ चलना है, फिक्स है उनको, कहां तक वो हमें ज्ञान दे सकते देते हैं, कितना हमें इंटरफेयर कर सकते हैं, कितना नहीं कर सकते हैं, है ना। वो सारी बातें कि उसके नियम और उसके बाहर नहीं जाते बाबा भी, आत्मा भी उसके बाहर नहीं, और प्रकृति के भी नियम और कायदे बने हुए हैं, शरीर के भी नियम और कायदे बने हुए हैं कि हमें किस समय सोना चाहिए, किस समय उठना चाहिए, किस समय क्या करना चाहिए, हर चीज का नियम कायदा बना हुआ है, नहीं बना हुआ। और उस नियमों कायदों को जाना हमें बहुत आवश्यक है। एक तो हमें ये जानना बहुत आवश्यक है, जो भी हम कर्म करते हैं वो सब रिकॉर्ड होता रहता है, कोई भी कर्म बिना रिकॉर्डिंग के नहीं चलता है, हर कर्म रिकॉर्ड होता है। हम कहें हमने कर्म किया, किसी ने देखा तो नहीं, कोई बात नहीं, पर रिकॉर्ड आपके अंदर तो रिकॉर्ड हो गया, और समय पर खुलेगा जरूर, ठीक है। अब कर्म क्या चीज है, कर्म खाली हाथ पैरों से कर्म करना कर्म नहीं कहते हैं, इन कर्मेंद्रियों के द्वारा, ये पांचों हमारी कर्मेंद्रियां जो हैं, आंखें, नाक, कान, मुख, त्वचा और हाथ पैर जो हमारे हैं, इनके द्वारा जो भी हम कर्म करते हैं वो कर्म कहलाता है। आंखों द्वारा देखना भी कर्म है, किसी को हमने देखा ना, किस दृष्टि से देखा वो भी कर्म है, पढ़ना भी कर्म है, सुनना भी कर्म है, बोलना भी कर्म है, खाना भी कर्म है, सूंघना भी कर्म है, और हाथ पैर से जो कर्म करते हैं वो तो है ही कर्म, चलना फिरना भी कर्म है, राइट। ऑफिस में, घर में जो भी काम, सब कर्म है। अब किस स्मृति में हम वो कर्म करते हैं, ये इंपॉर्टेंट बात है। अगर हम परमात्म स्मृति में या परमात्म श्रीमत पे कर रहे हैं तो वो श्रेष्ठ कर्म कहलाता है, शुभ कर्म कहलाता है, और अगर हम विकर्मों या उसके अंश या वंश के वश होकर कर्म करते हैं तो क्या कहलाता है, वो विकर्म कहलाता है, राइट। तो ये जो है, तो कर्म, विकर्म और अकर्म, अकर्म माने जो ऐसे कर्म करते हैं जो हम अभी जो अच्छे कर्म करते हैं उसके आधार पे जो हमारी प्रलब्ध, जो हमारे, जैसे हमने बहुत सारा पैसा इकट्ठा कर लिया, अब हम क्या खा रहे हैं, ब्याज खा रहे हैं, हम कमा नहीं रहे कि तो ब्याज खा रहे हैं, वो क्या कहलाते हैं, अकर्म, ठीक। वो हमने इकट्ठा कर लिया अभी अच्छे कर्म इकट्ठे कर, उसका फल खा रहे हैं सत्ययुग त्रेता में, वो अकर्म कहलाते हैं, ठीक है। अब जो है हम देखें कि हमारे जो विक्रम कैसे बनते हैं, विक्रम जो है बेसिकली विकार क्या है, विकार पांच विकार तो हम सभी जानते हैं, काम क्रोध लोभ मोह और अहंकार। अब ये जो काम क्रोध लोभ मोह अहंकार है, इनके दो दो बच्चे हैं, पता है सभी को? दो दो बच्चे सभी को पता होंगे, पता है ना? नहीं पता है। काम विकार के दो बच्चे कौन से? आलस्य और अलबिलापन। क्रोध के दो बच्चे कौन से हैं? दूसरे में दोष निकालने की आदत और बदला लेने की भावना, सिनिसिज्म इंग्लिश में कहते हैं दोष निकालने को, और बदला लेने की भावना रिवेंजफुल बिहेवियर को कहते हैं हॉस्टिलिटी। ऐसे लोभ के भी दो बच्चे हैं, शक और अनुमान, चिंता और मोह के दो बच्चे कौन से हैं? चिंता और भय। और फिर अहंकार के दो बच्चे कौन से हैं? प्रेशर में रहना, हमेशा प्रेशर, टाइम का प्रेशर, काम का प्रेशर, परफेक्शन का प्रेशर, जैसे मेरे काम का ऐसा ही होना चाहिए, जिसे टाइप ए बिहेवियर भी कहते हैं। आज सबसे बड़ी प्रॉब्लम, लोग प्रेशर में रहते हैं, हर आदमी प्रेशर में रहता है, घर का प्रेशर, बाहर का प्रेशर, इसका प्रेशर, उसका प्रेशर, अपना प्रेशर, अपने संस्कारों का प्रेशर, अपने अपनी आदतों का प्रेशर है ना। और यही सबसे बड़ा कारण है हर बीमारी का, मन का और तन की बीमारी का। कहते हैं अहंकार से देह अभिमान सबसे नंबर वन दुश्मन है ना, कहते हैं ना। तो इस देह अभिमान के कारण प्रेशर, मेरा नाम ऊंचा रहना चाहिए, मेरी बात सबको सुननी चाहिए ना, तो उस प्रेशर में उसको मेंटेन करने के लिए ना। और दूसरा है ईर्ष्या, ईर्ष्या द्वेष। तो ये जो है दो दो बच्चे इनके, फिर आगे दस दस बच्चे और हैं इनके, हर एक के दस दस और हैं, तो कितने हो जाएंगे? पांच के दस और दस के फिर आगे दस दस, सो हो गए ना, पूरी कौरवों की सेना तैयार हो गई, नहीं हो गई? तो ये सारे जो ये जो विकार है ना, विकार और इनके बाल वंश और वंश मैंने बताया, इनके वश होकर कोई भी कर्म करना वो विकर्म कहलाता है। काम के वश हम कोई कर्म करें, देखें किसी को काम के वश, उसकी काम के वश कोई किसी की बात सुने, कुछ बोलें, कुछ खाएं, हाथों पैरों से कर्म करें, है ना। और आलस के वश, अलबेलेपन के वश होकर कुछ कर्म करें, इसी तरह से लोभ के वश, मोह के वश, अहंकार के वश, चिंता के वश, भय के वश, किसी अनुमान लगा के कोई कर्म कर रहे हैं उसने ऐसा किया होगा, शक करके कर्म कर रहे हैं, वो भी विक्रम कहलाता है, ठीक है। और मैंने बताया सब विक्रम रिकॉर्ड होते हैं, यहां पे रिकॉर्ड हो जाते हैं, हमारे मेमोरी सेल्स में रिकॉर्ड हो जाते हैं, आत्मा में उसकी सूक्ष्म चिप रहती है, सूक्ष्म रिकॉर्डिंग और स्थूल रिकॉर्डिंग फिजिकल रूप में हमारे ब्रेन की सेल्स में रिकॉर्ड हो जाता है, उसका बकायदा मॉलिक्यूल बनते हैं वो ब्रेन में, हमारी ब्रेन की सेल्स 100 बिलियन न्यूरॉन्स है ब्रेन में, 10,000 करोड़ न्यूरॉन्स हैं, है ना, और वो सारे अंदर रिकॉर्ड हो जाते हैं। 100 बिलियन सॉरी, 1 बिलियन में कितने होते हैं? 1 बिलियन में कितना बिलियन 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 मिलियन के बाद बिलियन आता है ना, हाँ जी, नहीं मैं बिलियन की बात कर रहा, 100 बिलियन 100 बिलियन 10,000 करोड़, ठीक है, 10,000 करोड़ सेल्स हमारी ब्रेन में है, जो जिससे के पूरा ब्रेन कंट्रोल होता है ना, पूरी हमारी बॉडी का सिस्टम कंट्रोल होता है, तो उनमें सब में ना वो नर्व सेल्स न्यूरॉन्स में ये मेमोरी मटेरियल बन जाता है, ठीक है, और वो अंदर परमानेंट मटेरियल बन जाता है। और ये जो अपने रिकॉर्ड जो रिकॉर्डिंग होती है अंदर, ये क्या होता है, पाप कर्म क्यों कहलाते हैं, विक्रम क्यों कहलाते हैं, कि सपोज मैंने आपके साथ गुस्सा किया, अब 20 साल आप मुझे नहीं मिले हो, मुझे याद भी नहीं आई है, जैसे ही आप सामने आओगे 20 साल के बाद क्या होगा, वो फाइल खुल जाती है, हाँ गुस्सा, इसने ऐसा मेरे साथ बोला था, वो गुस्सा वापिस हो जाता है, नहीं होता है? हम चाहते हैं भले अब हम उसके बाद 20 साल पहले गुस्सा किया था, अब 18 साल से ज्ञान में चल रहे हैं, उसके बाद ज्ञान में आ गए, कि तू आज भी आपको देख के क्या होगा, वो बात आएगी फिर गुस्सा आ जाएगा, नहीं आएगा? होता है नहीं होता है? तो ये विक्रम क्या, हमसे बार बार हमसे पाप कर्म करा लेते हैं, मतलब फिर वो इससे पाप कर्म क्यों होता है, इसे पाप कर्म क्यों कहते हैं, ये करने से हमारी आत्मा की बैटरी डिस्चार्ज होती है। जब हम बैटरी डिस्चार्ज करने की बात कर रहे हैं, तो आत्मा में 7 गुण है, आत्मा एक जैसे अति सूक्ष्म पॉइंट ऑफ एनर्जी है, दोनों भृक्टों के मध्य, यहां से लगभग 2.5 इंच अंदर, यहां से 3 इंच नीचे, यहां स्किन के नीचे नहीं है, यहां से 2.5 इंच अंदर 3 इंच नीचे, जहां ये दोनों लाइन काटती है ना, बीच में लगे हुए है ना, हाइपोथैलेमस और पिट्यूटरी के बीच में, राइट ब्रेन लेफ्ट ब्रेन दोनों ब्रेन का जो कंट्रोल रूम है वो उसको हाइपोथैलेमस कहते हैं, और उसके नीचे पिट्यूटरी ग्लैंड है, वो मास्टर ग्लैंड है, उससे हार्मोन निकलते हैं। तो वो जो वहां पर बिल्कुल उसके मध्य में बैठी हुई है अति सूक्ष्म, ये आंखों से देख नहीं सकते, ना किसी माइक्रोस्कोप से, ना इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से, किसी भी चीज से देख नहीं सकते, इतनी सूक्ष्म है। जैसे सूरज से दो लाइट दो एनर्जी निकलती है, लाइट और गर्मी है ना, ऐसे आत्मा से सात सात लाइट निकलती है, सात एनर्जी निकलती है, ज्ञान पवित्रता शांति प्रेम सुख आनंद और शक्तियां, ये सात लाइट हमेशा निकल रही है और बॉडी के हर कोशिका में पहुंच रही है। हमारी बॉडी में 80,000 बिलियन कोशिकाएं हैं, 80,000 बिलियन कोशिकाएं हैं, मतलब इसे एक मकान ईंटों से बनाया, हमारी बॉडी 80,000 बिलियन कोशिकाओं से बनी, हर सातों एनर्जी बॉडी की हर कोशिका में पहुंच रही है और उससे ही बॉडी चल रही है। अगर आत्मा में सातों एनर्जी भरपूर है तो आत्मा को सत्व प्रधान कहते हैं, सत्व प्रधान माना सत्व माना सात, प्रधान माना भरपूर, सात में भरपूर। तो आत्मा जब सातों गुणों से भरपूर, इतनी एनर्जी निकल रही है, इतनी लाइट निकल रही है, इस बॉडी की हर कोशिका फुल है लाइट से, तो हमारी बॉडी कैसी है, कंचन काया है, मतलब परफेक्ट है, एकदम परफेक्ट, उसमें कोई भी रोग शोक किसी तरह का कोई मतलब ही नहीं है, अंश भी नहीं है बीमारी का, क्या होती है बीमारी पता ही नहीं, एवर हेल्दी, जो आज की मुरली सुनी ना, एवर हेल्दी, एकदम एवर हेल्दी है, हर सेल चमक रही सोने के माफिक है ना, एकदम सोलह नहीं वो है। फिर क्या होता है, धीरे धीरे आत्मा की बैटरी डिस्चार्ज होती है, आत्मा की बैटरी डिस्चार्ज होती जाती है, आक्रम करते हैं किंतु सत्युक्तता में फिर भी बैटरी थोड़ी डिस्चार्ज होती जाती है, और आते आते जब आत्मा की एनर्जी 50% है, आत्मा के साथ तीन सूक्ष्म शक्तियां, मन बुद्धि संस्कार। बुद्धि क्या है, बुद्धि जो है बेसिकली, बुद्धि जो आत्मा के आसपास जो सबसे ज्यादा एनर्जी है ना, जिस एरिया में, जैसे सपोज बल्ब है, ये बल्ब के आसपास सबसे ज्यादा लाइट है ना, तो जो सबसे ज्यादा लाइट है ना वो एरिया, जैसे वो एस्पेक्ट, अगर आत्मा को हम एनाटॉमिकली देखें, आत्मा की पोजिशन को, लोकेशन को, तो वो वहां जो सेल इस एनर्जी को रिसीव करती है, सातों एनर्जी को रिसीव करती है, ये स्पिरिचुअल एनर्जी, ये ज्ञान की एनर्जी, पवित्रता शांति प्रेम सुखाना शक्तियों की एनर्जी को वो सेंस करती है, वो सेल्स सेंस करके इसको फिर मेंटल एनर्जी में बदल देती है, किसमें बदल देती है, मानसिक ऊर्जा में बदल देती है, मानसिक ऊर्जा माना उसको विचारों में बदल देती है, किसमें बदल देती है, विचारों में, राइट, ज्ञान के विचार, पवित्रता के विचार, शांति के विचार, रूहानी प्यार के विचार, है ना, वो तो एनर्जी है, वो तो सिर्फ एक एनर्जी है, स्पिरिचुअल एनर्जी है, फिर वो किसमें बदले, तब एक्शन में कब आएगी, वो कर्म में कब आएगी, जब पहले विचार बनेंगे ना, तो वहां जैसे जैसे आपने देखा ना, ऊपर से नर्मदा डैम है ना, गुजरात में नर्मदा डैम है, सतलुज का भाखड़ा डैम है वहां पर, है ना, पंजाब में जो है, आप तो वहां से पंजाब से है ना, तो भाखड़ा डैम है ना, वहां कैसे पानी कैसे गिरता है, सतलुज से ऊपर से पानी गिरता है, नीचे क्या लगे हुए हैं, टर्बाइन्स है, टर्बाइन्स क्या करते हैं, टर्बाइन्स पानी गिरता है तो घूमते हैं, घूमने से क्या होता है, वो घूमते हैं तो एक पहले एनर्जी पैदा होती है वहां से, डायनेमिक एनर्जी पैदा होगी और वो एनर्जी काइनेटिक एनर्जी किसमें कन्वर्ट हो जाती है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट होती है, उसको डायनेमिक में स्टोर करते हैं, तो पहले 22,000 की वोल्ट की वोल्टेज वोल्ट की तारों से उसको पावर हाउस में लेते हैं, फिर उसके बाद 11,000 वोल्ट से फिर शहरों में पहुंचती है, और शहरों में आने के बाद घरों में 220 वोल्ट पहुंचती है, और 220 वोल्ट से क्या होता है, फिर हमारे घर में क्या चलता है, उससे क्या क्या चलता है, बल्ब जलते हैं, लाइट ट्यूब जलती हैं, पंखा एसी कूलर फ्रिज हीटर नहीं, और क्या क्या चलता है, सब कुछ उससे चलता है ना, अच्छा रेडियो टेलीविजन नहीं, हमारे कंप्यूटर्स मोबाइल चार्ज करते हैं, कितनी चीज चलती है, किससे चल रही है, किससे, पानी ऊपर से गिरा उससे चल रही है, पानी ऊपर से गिरा ना, पानी 300 फुट ऊपर से गिरा, 400 फुट ऊपर से गिरा, उससे क्या चल रहा है, हमारे घर में पानी गर्म हो रहा है, नहीं? कमरे गर्म हो रहे हैं, हीटर चल रहा है, फ्रिज में आइसक्रीम बन रही है ना, नहीं ऐसे, तो उस एनर्जी से बन रही है ना। अब देखो ज्ञान से हार्ट चलेगा क्या, पवित्रता से हार्ट चलेगा क्या, पेट में खाना कैसे पचेगा, अब पेट में खाना पच रहा, कितने सारे काम बॉडी में नहीं हो रहे, कितने सारे काम हो रहे, बहुत सारे काम हो रहे ना, इतने सूक्ष्म काम, डॉक्टर्स जो हम जानते होंगे कि बॉडी की कैसे एनाटॉमी फिजियोलॉजी कैसे चलती है ना, कैसे बीमारियां पैदा होती हैं, तो वो आत्मा पे यहाँ पर स्पिरिचुअल एनर्जी यहां से आत्मा से निकली, वो सेल्स ने सेंस की और सेल से सेंस करके उसको क्या किया, उसको पहले मानसिक एनर्जी में कन्वर्ट किया। जैसे वहां पर थी ना, काइनेटिक एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट हुई और इलेक्ट्रिकल एनर्जी फिर घरों में आके डिफरेंट मैकेनिकल एनर्जी को हो या जिस रूप में भी हमने इसको यूज किया है ना, ऐसे ही आत्मा से यहां पर पहले मानसिक ऊर्जा पैदा होती है, फिर मानसिक ऊर्जा किसमें जाती है, फिजिकल ऊर्जा में कन्वर्ट हो जाती है, भौतिक ऊर्जा में कन्वर्ट होकर हमारे हाथों द्वारा, पैरों द्वारा, हार्ट के द्वारा, पेट के द्वारा कर्म कराती है। ठीक है, तो ये वो स्पेशल सेल्स हैं जहां पर ये चीज कन्वर्ट होती है। अगर आत्मा यहां की बजाय यहां होती नाक में या ठोड़ी में होती, कहते ना किसी किसी की आत्मा यहां रहती है ना, किसी की आत्मा कहते हैं हार्ट में होती है, हार्ट में होती तो क्या होता, हार्ट में वो सेल्स ही नहीं है जो सेंस कर सके। आत्मा में चार, आत्मा में तो, हार्ट में तो चार चैम्बर्स हैं, खून ही खून है ना। आत्मा अगर हार्ट में कोई रहता आकर के तो क्या होता, कभी कहते ना कोई मेरे दिल में कोई बस गया है ना, अगर मैं कोई हार्ट में कोई बस जाए तो क्या हुआ, 70 बार तो उसको ऊपर नीचे होना पड़े, अंदर बाहर होना पड़े और खून में नहा रहा है बेचारा, नहीं कोई रहेगा हार्ट इस हार्ट में है ना, कोई रह सकता है, कोई भी रह नहीं सकता है ना, इस दिल में रह सकता है वो, मैं आगे बात बताता हूँ आगे। तो बुद्धि क्या है बेसिकली, बुद्धि वो सेल्स जहां पर ये आत्मा की सात एनर्जी निकल, सबसे ज्यादा सातों एनर्जी है उसको बुद्धि कहते हैं। ठीक है, और उसके आसपास जो सेल्स हैं फिर ब्रेन की और सेल्स हैं, हाइपोथैलेमस के बाद और सेल्स हैं। ये जो एरिया, जैसे ये एरिया है, ये एरिया हमारा, ये हमारा फ्रंटल कॉर्टेक्स है, फिर हमारा यहाँ पर टेम्पोरल लोब है, यहाँ पर लिम्बिक सिस्टम बना हुआ है, पूरा लिम्बिक सिस्टम एक कहलाता है। तो यहाँ पर जैसे आत्मा की चार, फिर आत्मा का मन है, आत्मा की दूसरी शक्ति शक्ति क्या है, मन है। तो मन जो है, मन में चार एस्पेक्ट है, बाबा ने समय समय पर मुरली में बताया, मन में एक तो स्मृति है, खाली विचार नहीं है, एक स्मृति है, एक वृत्ति है, एक भावना है, एक संकल्प है, चार बातें हैं। मन के चार पार्ट नहीं है किंतु मन के चार एस्पेक्ट हैं, चार डायमेंशंस हैं, एक स्मृति, वृत्ति, भावना और संकल्प। तो स्मृति जो भी आत्मा, जैसे जो भी आत्मा, जब जैसे सपोज आत्मा सेंस करती है, आंखों के द्वारा देखती है, कानों द्वारा सुनती है, मुख द्वारा बोलती है, मुख द्वारा खाती भी है, आंखों द्वारा पढ़ती भी है, वो सब का सब जो देखती सुनती बोलती वो सब यहां रिकॉर्ड कर लेती है। कहां रिकॉर्ड कर लेती है, यहां रिकॉर्ड, इन फ्रंटल कॉर्टेक्स में रिकॉर्ड करती है। और उससे जो फिर वृत्ति और भावना पैदा होती है, जैसी स्मृति वैसी स्थिति, जैसी मेरी स्मृति होगी तो वैसी स्थिति होती है, तो स्मृति के आधार पर स्थिति बनती है और स्थिति के आधार पर समर्थि आती है। अब मेरी स्मृति में स्मृति है, मैं एक आत्मा हूं, ठीक है, मैं एक पवित्र आत्मा हूं, तो उसके आधार पर जो मेरी स्थिति बनेगी है ना, और उसके बाद हिसाब से मेरी स्थिति समर्थि मेरे अंदर एबिलिटी आएगी। जैसे सपोज मैं प्रोफेशन है मेरा, मैं डॉक्टर हूं, हार्ट का डॉक्टर हूं, अगर मैं मुझे अगर ये याद रहे कि मैं हार्ट का मेरा प्रोफेशन हार्ट का डॉक्टर है, मैं हार्ट का डॉक्टर मेरा प्रोफेशन है, तो अगर तो अगर मेरे पास कोई पेशेंट आए तो क्या करेंगे, तो मेरे अंदर स्थिति है वो नहीं, ये वाली, और मेरे अंदर समर्थि में ठीक पेशेंट कहेगा डॉक्टर साहब ऐसे तकलीफ है, कोई बात, ये दवाई ले लो ठीक हो जाऊंगा, ऐसे कर लो ठीक हो जाऊंगा। मैं अगर मेरे को स्मृति भूल जाए मैं डॉक्टर हूं तो फिर क्या होगा, कोई गा के कहे डॉक्टर मुझे छाती में दर्द है, मैं कहूं क्या, मैं क्या करूं, डॉक्टर के पास जाओ, नहीं मेरे को क्यों बताते हो, समझे मेरी बात। तो स्मृति से समर्थि आई ना, स्थिति बनती है ना, डॉक्टर लिखा तो नहीं यहां पे है ना, तो जो स्मृति है वो अंदर ही रहती है, उसका असर अंदर रहता है, फिर स्मृति के आधार से वृत्ति बनती है, वृत्ति माना एटीट्यूड, दृष्टिकोण बनता है। तो वो वृत्ति जो है, वो वृत्ति जैसे हमारी एटीट्यूड जो होते हैं, वो एटीट्यूड और इमोशन यहां पे हमारे लिम्बिक सिस्टम के द्वारा एग्जीक्यूट होते हैं, यहां पर टेम्पोरल लोब के द्वारा। तो वो जो है उस वृत्ति से वायुमंडल बनता है, क्या बनता है, वायुमंडल। सपोज जैसे मेरी वृत्ति है मैं यहां पर बैठा हूं, आपके सामने बैठा हूं, तो जैसी मेरी वृत्ति होगी, जैसे मेरा एटीट्यूड होगा, जैसे मेरा मेरे मन में स्मृति है मैं आत्मा हूं, तो स्मृति के आधार पर मेरी वृत्ति कैसी बनी, दूसरे हम सब भी आत्माएं, आप सब भी आत्माएं, तो वातावरण कैसे, कैसा वायुमंडल बन जाएगा, यहां पर रूहानी वायुमंडल बन जाएगा, आत्मिक वायुमंडल बन जाएगा, ठीक नहीं। जैसे बाबा आते हैं, शिव बाबा, ब्रह्मा बाबा गुलजारदारी के दान में आते हैं डायमंड हॉल में, तो क्या होता है, कैसा वायुमंडल बन जाता है, कैसा, सारा 340 फुट का जो हॉल है वो सारा सारा कैसा होता है, रूहानियत से भर जाता है, अशरीरी हो जाते हैं, शिव बाबा अशरीरी है और सारा सारा वायुमंडल भी अशरीरी हो जाता है, नहीं होता है? तो जैसा व्यक्ति सामने दादी स्टेज पे आती है तो क्या होता है, सारा वायुमंडल में रूहानियत आ जाती है, नहीं? तो ये वृत्ति से वायुमंडल बनता है, और वायुमंडल का असर कहां तक होता है, जहां तक जैसे उस कमरे में उस हॉल में जहां पे वो व्यक्ति होता है। ऐसे कोई नेगेटिव वायुमंडल वाला व्यक्ति आ जाए तो, नेगेटिव वृत्ति वाला व्यक्ति आ जाए तो क्या होगा, कोई स्टेज पे आके डांस करना शुरू करे तो क्या होगा, वो देहबान में आके डांस कर रहा है तो क्या होगा, सारा वायुमंडल क्या होगा, बॉडी कॉन्शियस हो जाएगा, नहीं हो जाएगा। तो वृत्ति जैसे उसकी वृत्ति है ना, वृत्ति से वायुमंडल बनता है, ठीक है, और फिर वृत्ति से भावना पैदा होती है, वृत्ति से ही भावना भी पैदा होती है, और भावना का असर कहां तक होता है, कहां तक होता है, भावना का असर, दो व्यक्ति हैं उनके आपस में बीच में भावना है, मां और बेटे की भावना है, तो उसका मान लो 500 किलोमीटर दूर भी है तो क्या होगा, वो 500 किलोमीटर मां और बेटे के बीच में वो वाइब्रेशंस काम करते हैं, ठीक है, नहीं करते, जैसे हम बाबा कहते हैं तुम शुभ भावना संपन्न योग करो, शुभ भावना हरेक के लिए शुभ भावना रखो, तो क्या होता है, हमारे हमारे वाइब्रेशन कहां पहुंचते हैं, जहां तक हम पहुंचाना चाहें, सपोज मैं चाहता हूं लंदन पहुंच जाए, लंदन पर लंदन वालों के प्रति शुभ भावना है तो लंदन के सारी आत्माओं के प्रति जो बाबा के बच्चे उनके प्रति उनको वाइब्रेशन पहुंच जाए, ठीक है, तो वाइब्रेशन हजारों किलोमीटर दूर तक भी काम करते हैं, और फिर भावना के आधार पर संकल्प पैदा होते हैं, संकल्प का असर कहां तक होता है, संकल्प का असर सारी सृष्टि पे होता है, इवन पेड़ पौधों पर भी होता है, जो आपके आसपास पेड़ पौधे हैं, जो आपके आसपास इवन प्राणी हैं, मतलब जंतु भी है ना, जैसे सपोज कुत्ता बिल्ली आपके घर में रहते हैं, आते हैं घर से आसपास घूमते रहते हैं ना, उनके ऊपर भी असर होता है, और सारे पेड़ पौधों पर, सभी सभी आत्माओं पर असर होता है, इवन सूर्य चांद तारों पर भी होता है, मनुष्य धरती के हर मनुष्य पर उसका असर होता है, पांचों तत्वों पर उसका असर होता है, आकाश अग्नि वायु जल और पृथ्वी पांचों पर उसका असर होता है, और दस गुना होकर आपको वापस आके अटैक करता है, अगर आप अच्छे संकल्प करते हो दस गुना वापस आके आपको अच्छे उसके, ये आज बाबा ने कहा बैंक है, आज वरदान था ना, बैंक है ना, कितने क्या क्या रेट है हमारे बैंक का, हाँ एक का पदम गुना, और उस बैंक ये जो ये दूसरी जो संकल्पों की बैंक का क्या रेट है, दस गुना, ठीक है ना, एकदम एक सेकंड में ही आप करते हो दस गुना आके आपको, आपने बुरा संकल्प किया दस गुना आपका आके और बुरा अटैक करता है ना, राइट, तो आप जैसे संकल्प वैसा आपका असर होता है, तो ये फिर मरा मन है, स्मृति वृत्ति भावना और संकल्प, उसके बाहर हमारी फिजिकल बॉडी है, तो ये जो हमारा सूक्ष्म शरीर है ये बुद्धि और मन हमारा सूक्ष्म शरीर है, और ये स्मृतियां जो है ये हमारे संस्कार है, जो चीज हम बार बार करते हैं वो हमारा हैबिट बन जाती है, संस्कार, हैबिट माने संस्कार, आदत को ही संस्कार कहते हैं, जो चीज फिर जैसे जैसे हमने कुछ चीज खाने की आदत पड़ गई, गुस्सा करने की आदत पड़ गई, बार बार गुस्सा करते हैं, बार बार लोभ करते हैं, अहंकार करते हैं, कोई बात का भी फिर आदत पड़ जाती है, अच्छा या बुरा वो संस्कार बन जाता है, ठीक है, तो ये संस्कार भी अंदर स्मृति को संस्कार कहते हैं, ऐसे बेसिकली, तो ये बुद्धि के भी चार एस्पेक्ट हैं, जो बुद्धि का सबसे अंदर वाला एस्पेक्ट है वो उसे दिल कहते हैं, कॉन्शियसनेस कहते हैं, कॉन्शियंस कहते हैं, ये जरूरी है क्योंकि हम समझना चाहें ना अगर विक्रम कैसे विनाश हो, ये समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि समझ नहीं पाएंगे, है ना, तो उससे अंदर जो कॉन्शियसनेस है, दिल जिसे कहते हैं, कहते हैं हार्ट ऑफ द सोल, ये वाला दिल नहीं, ये वाला दिल, कहते हैं ये दिल में मेरे को समा गया, ये दिल जो हम कहते हैं मेरी कॉन्शियसनेस मुझे अलाउ नहीं कर रही है, मेरी कॉन्शियस मुझे अलाउ नहीं करती है, सबसे ज्यादा जो सातों एनर्जी रहती है, कैसे कितना तमो प्रधान मनुष्य हो उसमें सातों एनर्जी दिल में होती है, जो थोड़ी है कि तो होती जरूर है, तो दिल में सात एनर्जी के जो एनर्जी है ना, आत्मा की एनर्जी है, आत्मा के गुण है, वो दिल में सबसे ज्यादा होते हैं, तो उसके आधार पे हमारा विवेक बनता है, सेकंड जो एस्पेक्ट है बुद्धि का वो है विवेक, विजडम मतलब परखने की शक्ति, इन सात गुणों के आधार पे हमें परखने की शक्ति आती है कि क्या गलत है क्या ठीक है, विवेक के आधार पे हमारी बुद्धि बनती है, बुद्धि माना निर्णय करने की शक्ति है ना, फिर हम जब एक बार परख लेते हैं राइट क्या है रॉन्ग क्या है, तो हम परख हम निर्णय कर सकते हैं क्या ठीक है क्या गलत है, और जो हमने निर्णय कर लिया कि हमने ये काम करना है ऐसे का हाँ ये करना है, तो वो फाइल कहां चली जाती, सीधी स्मृति में चली जाती, मतलब मन में चली जाती, स्मृति मन का एस्पेक्ट है, कहां का एस्पेक्ट है, मन का एस्पेक्ट है, किंतु एक और दोनों के बीच में चीज है, बुद्धि और मन के बीच में एक चीज कड़ी है, वो क्या है, हमारा चित्त है, क्या है, सबकॉन्शियस माइंड, वैसे बुद्धि का पार्ट है, वो बुद्धि का पार्ट नहीं, बुद्धि का एस्पेक्ट है, बुद्धि का पार्ट नहीं होते, बुद्धि के एस्पेक्ट है ना, तो वो दोनों के बीच की चीज है, इसलिए उसको सबकॉन्शियस माइंड कहते हैं, एक माइंड है ये सब कॉन्शियस है, मतलब वो कॉन्शियस माइंड है, ये सब कॉन्शियस माना चित्त है। इसमें जो है क्या होता है, जो फाइलें हम डिसाइड नहीं कर पाते हैं, सेव नहीं कर पाते हैं, वो हम सेव नहीं करते हैं, वो फाइलें कहां जाती, चित्त में चली जाती है। ठीक है, देखो जब हम सत्व प्रधान थे, सत्युग में थे, तो हमारे पास दिल में सातों एनर्जी भरपूर थी, ज्ञान पवित्रता शांति प्रेम सुख आनंद शक्तियों से भरपूर थे। भरपूर थे तो क्या था, विवेक हमारा कैसा था, सातों गुण भरपूर थे तो विवेक हमारा सत्य विवेक था। सत्य विवेक मतलब सत्य पे आधारित, दिल में सत्य था, आत्मा बाबा कनेक्शन ड्रामा है ना, ये सूक्ष्म रूप में, सूक्ष्म रूप में मतलब हमारे ये अंदर भरा हुआ था, मैं आत्मा हूं। ज्ञान माना बेसिकली एबीसीडी, एबीसीडी, ए फॉर आत्मा, बी फॉर बाबा, सी फॉर कनेक्शन, डी फॉर ड्रामा, ये सार रूप में समाया हुआ था, मैं आत्मा हूं, परमात्मा के संतान हूं, मेरे सरल संबंध उसके साथ है, डी फॉर ड्रामा। ये संसार रूपी नाटक में हर आत्मा एक्टर है, कर्म सिद्धांत के अनुसार हर आत्मा एक्यूरेट पार्ट बजा रही है। कोई मेरी पत्नी क्यों बना, पति पति क्यों बना, मेरे माँ बाप क्यों बने, मैं इस घर में क्यों जन्म लिया, ये मेरे बच्चे क्यों बने, ये मैंने बिजनेस क्यों कर रहा हूं, ये मेरा दोस्त क्यों बन गया, ये मेरा पड़ोसी क्यों बन गया, ये पिछले जन्मों कर्म सब कर्मों का हिसाब किताब है, लेन देन है ना। तो उसके अनुसार मुझे किसी ने धोखा दिया, दुख दिया, दे रहा है, अभी भी दे रहा है, क्यों दे रहा है, कर्म, मैंने दुख दिया हुआ है, धोखा दिया मुझे, अभी किसी ने धोखा दिया, क्यों धोखा दिया उसने मुझे, धोखा दिया हुआ है पहले है ना, और ब्याज के साथ वो दुख देता है, मैंने दुख दिया था पिछले दिन में 500 रुपए जितना, अभी वो क्या करता है, ब्याज लगा के देता है ना, राइट। ब्याज का रेट पता क्या क्या होता है, मैं आपको एग्जाम्पल देता हूं, अगर आपने किसी 100 साल पहले किसी से 500 रुपए उधार लिया था, अब वो आपको कहता है भाई साहब आपके कहता है भाई साहब मेरा वापस करो ना, आप 500 रुपया तो मूलधन है, तो 500 रुपया मूलधन हो गया, 100 साल में कितना ब्याज हो गया 500 रुपए का, लगा के देखना आपसे है 50 करोड़ हो जाता है ना। कहता है भाई साहब 500 रुपया तो वो दे दो मूलधन, अब 50 करोड़ का ब्याज दे दो वापस, नहीं अब वो मांगे आपसे तो क्या होगा आपको, है ना, क्या होगा, 500 रुपए देना तो सहज है ना, कि तो 50 करोड़ देना। इसलिए आज का इंसान, हर इंसान दुखी है, संबंधों में बंधन है, हम कितना दे रहे हैं तो भी खुश नहीं है, हम खूब कमाते हैं, पत्नी को देते हैं, बच्चों को देते हैं, फिर भी देखो पत्नी देखो मुचड़ा के रहती है ना, मुचड़ा के रहती, क्या क्या बोलते हैं उसको पंजाबी में, क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं पंजाबी बठिंडा में, क्या बोलते हैं बोलो है? बच्चों को देखो, बच्चों को कितना मर्जी दे दो, कितना मर्जी कर लो, बच्चे संतुष्ट होते हैं क्या है? क्योंकि ब्याज इतना देना बाकी है ना अभी, नहीं है ना। अच्छा पत्नी पति के लिए कितना मर्जी करे, पति खुश रहता है क्या? अपनी सास के लिए कुछ इतना मर्जी करो, सास खुश रहती है क्या, होती है क्या, खुशी नहीं होती है ना। बच्चे माँ बाप के लिए कुछ करें, माँ बाप खुश नहीं होते। बॉस के लिए कितना मर्जी कर लो, बॉस खुश नहीं होता, होते हैं क्या, कोई खुश नहीं होता किसी से, क्योंकि ब्याज बहुत है ना। हम सोचते हैं हम इतना दे रहे हैं, इतना कर रहे हैं, इतना कर रहे हैं, अरे 50 करोड़ तुम सारा अपने आप को भेज दो तो भी नहीं पूरा होगा, नहीं तो इतना ब्याज चढ़ा पड़ा है हमारे ऊपर। तो इसलिए जो है ये कर्मों का, तो सातों एनर्जी जब हम लोग भरपूर है तो विवेक सत्य है और एक सेकंड में निर्णय हो जाता है, और चित्त हमारा क्या हो गया, एकदम शांत, चित्त में फाइल जाती ही नहीं कोई, हमने निर्णय तुरंत करते हैं, सेकंड में निर्णय करते हैं, और फाइल कहां जाती है, सीधी स्मृति में जाती है। तो हमारा जो दिल में है वो चित्त में है, तो दिल में शांति है, प्यार है, खुशी आनंद है, तो कहते दिल में सत्य है तो चित्त आनंद स्वरूप है। इसलिए हमारी सत्य में क्या स्थिति है, सच्चित आनंद स्वरूप है, परमात्मा सदा सत्यचित आनंद स्वरूप है, किंतु सिर्फ हम कहां सत्यचित आनंद स्वरूप है, सिर्फ सत्युग में सच्चित आनंद स्वरूप, सत्युग त्रेता में हम, हमारी क्या स्थिति है, सच्चित आनंद स्वरूप है। दिल में सत्य है, सात गुण सत्य है, ज्ञान पवित्रता शांति प्रेम सुख आनंद शक्तियां, और चित्त हमारा कैसा है, आनंद स्वरूप है। ठीक है, अब क्या होता है द्वापर युग में, मैं ड्रामा की बात में बीच में एक लाइन भूल गया, तो जब हमने कहा ना हम सब आत्मा एक्टर है, कर्म सिद्धांत के अनुसार एक्यूरेट पार्ट बजा रही है, और बाबा इसका डायरेक्टर है, कर्म सिद्धांत के अनुसार एक्यूरेट डायरेक्शन दे रहा है, पार्शियलिटी से नहीं दे रहा है। मैं बाबा को कहूं बाबा ये मेरे को आत्मा बहुत दुख देती है, इसको ठीक कर दो ना आप, तो बाबा क्या कहेगा, बाबा कहेगा उस आत्मा कहेगा इसको पूरा दुख दो, अकाउंट ब्याज लगा के दो, ताकि चुकतू हो जाए मेरा बच्चा, है ना, है ना। किंतु आप बाबा को याद बहुत प्यार से करते हो, बाबा क्या करता है आपको सहन करने की शक्ति दे देता है, ताकि आपका अकाउंट भी चुकतू हो जाए और वो अपना उसका अकाउंट भी चुकतू हो जाए, आपका भी चुकतू हो जाए और आप बंधन मुक्त होके मुक्ति, जीवन मुक्ति को प्राप्त कर सको। ठीक है, इसलिए अब तक जो कुछ हुआ है अच्छा हुआ है, और जो हो रहा है अच्छा हो रहा है, और जो होने वाला है बहुत अच्छा होने वाला है। तो इस तरह से जब जितना इस ज्ञान का हम मनन चिंतन करते हैं, जितना इसको ज्यादा रिवाइज और रियलाइज करते हैं, उतना हमारा क्या होता है, उतना मन और बुद्धि पवित्र होती जाती है। तो इस ज्ञान के मनन चिंतन मंथन से हमारी, हमारे अंदर पवित्रता आती है, मतलब विचार कम हो जाते हैं। तो अभी क्या हो रहा है, अभी मैं आपको बताता हूं, अभी हम लोग क्या कर रहे हैं, कैसे हमारे, कैसे हम विकर्म बनने शुरू हुए द्वापर युग से, कि जब हम आत्मा की बैटरी 50% से कम हो गई, 49% हो गई, तो अभी मन राजा बन गया। पहले आत्मा राजा थी, अब मन राजा बन गया। अभी क्या होने लगा, मन का कनेक्शन पांचों कर्म इंद्रियों से था, आंख नाक कान मुख त्वचा से था, उसने बाहर से इन्फॉर्मेशन, अंदर ज्ञान था आत्मा का, परमात्मा का, संबंधों का और डिफॉल्ट ड्रामा का। अभी क्या हो गया, उसको बाहर का ज्ञान, ये धरती के अंदर क्या है, पांच तत्वों का ज्ञान, देह मनुष्य सामने दिखाई देने लगे, देह दिखाई देने लगे, ये आकाश में क्या है, वायु में क्या है, सूरज चांद तारे क्या है, है ना, समुद्र के नीचे क्या है, धरती में क्या है, तो इनकी खोज करनी शुरू कर दी। ये पांचों तत्व आकर्षित करने लगे और वो दिल में जाने लगा। अब अंदर दिल में क्या हो गया, सत्य ज्ञान भी और सत्य भी, सत्य माना ये प्रकृति का ज्ञान भी अंदर चला गया। ठीक है, अब विवेक क्या हो गया, विवेक कंफ्यूज हो गया, नहीं करना। अब सपोज मेरा बच्चा है और बच्चा मुझे पता गलत काम कर रहा है, अब उसको मैं क्या 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 परखूं, मेरा मुंह क्या कहता है, नहीं बच्चा है कोई बात नहीं करने दो, नहीं तो परख सब, विवेक क्या हुआ, कंफ्यूज हो गया, कहूं कि नहीं कहूं, निर्णय कर सकती है, निर्णय कर सकता हूं, निर्णय कर नहीं सकता हूं, वो फाइल कहां जाएगी, मेरी युगल है कहना नहीं, कुछ गलत कर रही है, अब मैं उसको कुछ कह नहीं सकता हूं क्योंकि उसके प्रति प्यार है, प्यार नहीं है उल्टा प्यार है, है ना, है ना, तो क्या करें, उसको कुछ कह नहीं सकते हैं, तो क्या होगा, फाइलें कहां जा रही है, चित्त में जा रही है ना, निर्णय नहीं दिया ना, फाइल मेमोरी में नहीं जा रही, कहां जा रही, चित्त में जा रही है, बच्चों की फाइल, मेरा लोभ है बिजनेस में, धंधे में लोभ है, तो फाइल कहां जा रही है, चित्त में जा रही है। तो हमारा सबकॉन्शियस माइंड बड़ा होता जा रहा है, सबकॉन्शियस माइंड दिन दिन बड़ा होता जा रहा है, चित्त हमारा अशांत और चंचल होता जा रहा है। मेमोरी में भी फाइलें कहां जा रही है, मेमोरी में अब क्या हो रहा है, एबीसीडी रिकॉर्ड नहीं हो रहा है, पहले मेमोरी में सिर्फ एबीसीडी रिकॉर्ड होता था, आत्मा बाबा कनेक्शन ड्रामा, उसके आधार पर हमारी वृत्ति आत्मिक थी, भावना सबके प्रति शुभ थी, संकल्प शुद्ध से शक्तिशाली कल्याणकारी थे, और इसलिए आत्मा की सातों एनर्जी बॉडी के रोम रोम में भरी हुई थी, कंचन काया थी। अभी क्या हुआ, द्वापर की बात कर रहा हूं अभी मैं, तो ऐसे हमारा चित्त धीरे धीरे बड़ा होता जाता है, बड़ा होते होते क्या होता है, अब मेमोरी में भी वो फाइलें, इतना देवमान घुस जाता है अंदर, तो मेमोरी में जो फाइलें कौन सी जा रही है, अब वही एबीसीडी की बजाय देवमान की फाइलें, दे के संबंध, दे के स्वभाव संस्कार, दे के पदार्थों की फाइलें रिकॉर्ड होनी शुरू हो जाती है। ठीक है, ओवरफ्लो होता है ना चित्त का, चित्त से भी, तो वो रिकॉर्ड, वृत्ति सबके पर देही की हो जाती है, वृत्ति क्या होती है, लगाव झुकाव टकराव वाली हो जाती है, लगाव मोह के आधार पे, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार के आधार पे किसी से हमारा लगाव होता है, किसी से झुकाव होता है, किसी के प्रभाव में आ जाते हैं, किसी से टकराव होता है। तो हमारी वृत्ति कैसी होती है, लगाव झुकाव प्रभाव और टकराव वाली, ठीक है, ये हमारी वृत्ति हो जाती है। भावना उसी के आधार पे, जो जिससे लगाव झुकाव है, जिसका प्रभाव है उसके प्रति शुभ भावना, इनका गलत करे तो भी ठीक हो जाए, और जिससे टकराव है वो अच्छा करे तो भी उसका सत्यानाश हो जाए, नहीं ऐसा, मन से दुआएं निकलती हैं उनके लिए जिनसे टकराव है, अच्छे नहीं लगते वो लोग ना, और फिर संकल्प उसी आधार पर चलते हैं, और उसके आधार पर क्या, शरीर का क्या हाल है, अब एनर्जी जो यहां से निकली वो यहां पहुंचती नहीं है, ब्लॉकेज होगी रास्ते में, स्मृति में ब्लॉकेज है, वृत्ति में ब्लॉकेज है, भावना पे ब्लॉकेज है, और संकल्पों में नेगेटिव चल रहा है, संकल्पों से शरीर बना है, संकल्पों से शरीर फिर काम नहीं करता। ये सूक्ष्म शरीर स्थूल शरीर कैसा, जैसे एक सूखी ब्रेड ले लो, आप सूखी ब्रेड ले लो, एक प्लेट में दूध डाल दो, ब्रेड उसमें डालो तो क्या होगा, दूध कहां गया, ब्रेड के अंदर। अब दूध की शेप क्या है, जो ब्रेड की शेप है, तो दूध कहां समाया है, ब्रेड के रोम रोम में समाया है, और ब्रेड कहां समाई है, दूध के रोमरों में समाई है ना, तो आपस में उत्प्रोत हो गए ना, तो सूक्ष्म शरीर और स्थूल शरीर ऐसे ही आपस में उत्प्रोत है। जो सूक्ष्म शरीर की शेप है वही स्थूल शरीर की शेप है, जो स्थूल शरीर की शेप है वही सूक्ष्म शरीर की शेप है। समझ में आए सूक्ष्म शरीर स्थूल शरीर क्या है? इसलिए एक एक विचार का असर, एक एक भावना का असर, एक एक संकल्प का असर, एक एक एटीट्यूड का असर, एक एक स्मृति का असर हमारी किस पे पड़ता है? इस फिजिकल बॉडी पे पड़ता है। तब कहते हैं 95% से अधिक हमारी साइकोसोमेटिक है, हर बीमारी साइकोसोमेटिक है, पहले मन में पैदा होती फिर बॉडी में पैदा होती। तो आज की इंसान की हालत क्या है? सूक्ष्म शरीर क्या हो गया? गंदा हो गया, हमारी बुद्धि भी खराब हो गई और मतलब विवेक भी क्या हो गया? कंफ्यूज, बुद्धि भ्रष्ट, चित्त अशांत और चंचल, और स्मृति में देह देह के संबंध, देह के स्वभाव संस्कार, देह के पदार्थ और वृत्ति, देहिक भावना डिपेंडिंग ऑन दैट, और संकल्प विकारों के संकल्प चलते हैं, और देह रोगी नहीं। सबको दो बीमारी सबको फ्री में मिली हुई है इस समय, कम से कम दो बीमारी, और शरीर के अंदर तो वही बीमारी, मन के अंदर तो छह बीमारी सबको फ्री है, छह बीमारी मन में कम से कम, और तन में कितनी बीमारी? कम से कम दो। तो अष्टरत्न तो सभी हैं इस समय, है ना, बीमारियों के हिसाब से है ना, नहीं है? नहीं है अष्टरत्न, अस कंकड़ भरे हुए हैं अभी बीमारी सबके अंदर। तो ये हालत आज के इंसान की है। नॉर्मली जब हम 15 संकल्प, जब हमारे विचार होते हैं तो हम 15 संकल्प एक मिनट में कर रहे होते हैं, उसमें से 6-7 संकल्प कॉन्शियस माइंड से आते हैं, 7-8 सब कॉन्शियस माइंड से आते हैं। क्योंकि जैसे ही हम देह और देह के संबंध, देह के स्वभाव संस्कार, देह के पदार्थों की बातें करने लगते हैं तो हमारे क्या होता है? तो हमारे विचार बढ़ जाते हैं, विचारों की संख्या एक मिनट में बढ़ जाती है, 20 हो जाती है। और जब 20 विचार होते हैं तो क्या होता है? हमारे कॉन्शियस मन के विचार कम हो जाते हैं, सब कॉन्शियस के और ज्यादा बढ़ जाते हैं। जैसे मैंने बताया 7-8 होते हैं नॉर्मली आंख खोल के बैठे, तो जब हम चिंता करते हैं तो क्या होता है हमारे अंदर? हमारे सबकॉन्शियस माइंड के विचार 16-17 हो जाते हैं, और 4-5 विचार कॉन्शियस माइंड से होते हैं। फिर डर होता है तो 25 विचार हो गए, तो 25 हुए तो उसमें से क्या होगा? 3 विचार कॉन्शियस माइंड से, 22 विचार सबकॉन्शियस से, मतलब चित्त से आते हैं। और हम डर जब चिड़चिड़ हो जाते हैं तो क्या होता है? 2 विचार कॉन्शियस माइंड से और 28 विचार सबकॉन्शियस माइंड से। फिर जब गुस्सा करते तो क्या होता है? 1 विचार कॉन्शियस माइंड से, 34 विचार सबकॉन्शियस माइंड से, नहीं? और जब 45 हो जाते हैं विचार तो क्या होता है? 45 सबकॉन्शियस माइंड से। तो उसमें लॉस ऑफ इनसाइट, उसमें ये नहीं रहता कि मैं कौन हूं, यही नहीं बताता मैं क्या कर रहा हूं, क्या बोल रहा हूं, क्या क्या सुन रहा हूं, किसको लड़ाई होती, क्या होता है, समझ रहती है मैं कौन हूं, किससे बोल रहा हूं, एकदम लाल पीले हो जाते हैं। तो विकारों में क्या होता है? विकारों में जैसे हम जाते हैं ना काम क्रोध लोभ मोह अहंकार की वश, इसके बाल बच्चों की तरफ, तो क्या होता है? हमारे सबकॉन्शियस इतना बड़ा हो जाता है रावण के माफिक, और कॉन्शियस माइंड खत्म हो जाता है, लॉस ऑफ इनसाइट। इसलिए आज के इंसान डिप्रेशन और स्किजोफ्रेनिया समझते हैं ना, क्या कहते हैं हिंदी में, क्या कहते हैं स्किजोफ्रेनिया को? साइकोसिस जो होते, पागल हो जाते हैं, पागल है ना, मतलब उसको क्या होता है, दिखाई ना देने वाली बातें दिखाई देती हैं, ना सुनाई देने वाली बातें सुनाई देती हैं, हैलुसिनेशंस होते हैं, उसको भूत दिखाई देते हैं, उसको कुछ दिखाई देगा, ये दिखाई देगा, कभी कुछ दिखाई देगा, कोई बातें कानों में अपने आप आती हैं, एकदम लॉस ऑफ इनसाइट हो जाता है। तो आज इंसान इसलिए बढ़ती जा रही स्किज़ोफ्रेनिया, और ये बढ़ती जा रही क्योंकि देह, आज का इंसान देह, देह के संबंध, देह के स्वभाव संस्कार, देह के पदार्थ में खोया हुआ है। ये है पूरा विकर्म, विकर्मों से भरपूर इंसान है ना। अविकर्माजीत कैसे बने? मैं सिर्फ आपकी आज्ञा हो तो मैं ले सकता हूँ 10 मिनट और 10-15 मिनट, क्योंकि मेरे को सब्जेक्ट अभी मैं सिर्फ भूमिका बनाने रह गया क्योंकि समझना, पहले समझना बहुत जरूरी ना, पहले मैं विकर्म के ऊपर बात करूं, ऐसे विकर्माजीत बनने की बात करूं तो फायदा क्या है। अब जो है, अब हमें इस पे आगे आना है, ठीक है, अभी हम क्या करें, अब हमें क्या करना है कि बाबा ऐसे बच्चों को देवता बनाने चला है, ठीक है, जो इसमें भरपूर है सब बातों से, है ना, ठीक है। तो बाबा क्या करता है, बाबा सबसे पहले क्या करता है, दिल पे अटैक करता है। उसका नाम क्या, दिलाराम है ना, है? क्या नाम है उसका? दिलाराम। तो दिल हमारे दिलों को टच करता है, किससे? स्नेह से, प्यार से, क्योंकि हम सब जगह से मार खाए हुए हैं ना, संबंधों में मार खाई, सब जगह मार खाई है, सब देखा है, सब मतलबी है, धोखे वाले हैं, है ना, सब स्वार्थी हैं, है ना?
तो सब सब भरे पड़े अंदर से, नहीं भरे पड़े हो, कहीं सुख मिला है? सब कुछ मतलब बेकार एकदम। तो अभी बाबा क्या करता है, हमारे दिलों को टच करता है, दिलों में क्या करता है, ये भरता है कि बच्चे मैं तुम्हारा बाप हूं, तुम ये हो। पहले तो मैं शूद्र से ब्राह्मण बनाता है। शूद्र से ब्राह्मण कैसे बनाता है? मनुष्य का मतलब क्या है? मनुष्य माना मन प्लस उष्य, माना मन के वश में। हम सत्यु त्रेता में देवी देवता थे और त्रेता द्वापर में मनुष्य बने, मतलब मन का राज शुरू हुआ तो मनुष्य बने, मन के वश में आ गए। अब मन घोड़ा है ना, कहते मन घोड़ा है, तो हम इनके कर्मेंद्र के वश में हो गए, है ना। तो मन के आधार पर चलने, पांचों कर्मेंद्र के वश में हो गए, पांचों तत्वों के वश में हो गए, पांचों विकारों के वश में हो गए, पांचों तत्वों के वश में हो गए। अब बाबा क्या करता है, बाबा आकर के सबसे पहले कहते हैं बच्चे तुम ये, और हमने आपको हम स्थूल देह समझने लगे, बॉडी कॉन्शियस हो गए। बॉडी कॉन्शियस सोल कॉन्शियस किस आधार पे होते हैं? जब हम जब सातो एनर्जी भरपूर है तो हम सोल कॉन्शियस होते हैं, 50% से अधिक होगी सातो एनर्जी तो सोल कॉन्शियस होंगे, और जब हमारे अंदर सातो एनर्जी 50 से कम हो जाएंगी तो हम बॉडी कॉन्शियस हो जाते हैं। जैसे मैं एक एग्जांपल ऐसे दे सकता हूं कि एक आदमी है, सेठ का बच्चा है, बहुत बड़ा करोड़पति उसका बाप है, और वो भिखारी है बच्चा, मतलब माँ बाप से बिछड़ा हुआ है, और उसको कहता है तुम्हारा बाप तो सेठ है ना, देखो कितना करोड़पति है, तो अपने आप को सेठ सेठ समझना, और उसके पास खाने को पैसे भी नहीं है, कपड़े फटे हुए हैं, तो सेठ उसको कहेगा अपने आप को सेठ? नहीं कहेगा ना। कि तू हाँ, वो उसका बाप उसको अडॉप्ट कर ले और वो बाप को पहचान जाए, है ना, अपने को पहचान जाए, बाप को पहचान जाए, अपना उससे संबंध क्या है वो पहचान जाए, और फिर वो उसके हिसाब से जब रहे उसके पास जाके तो क्या होगा, तो अपने को सेठ समझ सकता है। इसलिए भले हम जान जाए कि मैं आत्मा हूं, कि तू बिना बाबा की याद के, बिना बाबा की गोद के मैं अपने को आत्मा समझ नहीं सकता। ठीक है, आप समझे आत्मा क्यों नहीं समझ सकते? हमें पता है मैं आत्मा हूं, किंतु आत्मा कर्मों में आते थे, आत्मा है क्या? हम बच्चों से बात कर रहे हैं, दोस्तों से बात कर रहे हैं, तो उसमें आत्मा है क्या? नहीं, क्योंकि भूल जाते हैं हम बाबा के बच्चे, बाबा से कंबाइंड स्वरूप को भूल जाते हैं, इसलिए क्या होता है, फिर देह अभिमान में आके बातें शुरू कर देते हैं, ईगो में आ जाते हैं, क्रोध में आ जाते हैं। तो सोल कॉन्शियस होने के लिए जरूरी है कि आत्मा में सातों गुण कितने हो, 50% से ज्यादा हो। ठीक है, तो बाबा हमको ये अपने पहले शूद्र से ब्राह्मण बनाता है। ब्राह्मण का मतलब ही क्या है? ब्राह्मण का मतलब है ब्रह्म माने बड़ा, विशाल, बेहद, मन, जिसका मन बेहद में हो, जिसकी बुद्धि बेहद में हो, अर्थात जिसकी बुद्धि में देह की बजाय आत्मा हो, जिसकी बुद्धि में ये द्विलौकिक बाप की बजाय बेहद का बाप हो, आत्मा परमात्मा एबीसीडी हो, मैं सार रूप में कहूं तो इसकी बुद्धि में एबीसीडी हो ना, वो कौन है? ब्राह्मण है। ठीक है, आत्मा बाबा कनेक्शन, मेरे सब संबंध बाबा से हैं, देहधारियों से नहीं। और संसार रूपी नाटक इसमें ड्रामा है, इसमें ड्रामा में हर आत्मा एक्टर है, जो हुआ अच्छा हुआ, जो हो रहा अच्छा, जो होने वाला बहुत अच्छा होने वाला। तो ब्राह्मण माना ये है, जिसकी बुद्धि बेहद में हो, विशाल हो, मन वे मन माना स्मृति वृत्ति भावना और संकल्प बेहद के हो। ठीक है, तो बाबा कहते हैं बच्चे तुम स्थूल देह नहीं हो, इस स्थूल देह को चलाने वाली अति सूक्ष्म ज्योति बिंदु आत्मा हो। तो अपने को दे अति सूक्ष्म ज्योति बिंदु आत्मा, और तुम अति सूक्ष्म ज्योति बिंदु आत्मा से सात एनर्जी निकल रही है जिससे शरीर चल रहा है, और तुम अपने को अति सूक्ष्म ज्योति बिंदु आत्मा समझ के मुझ अति सूक्ष्म ज्योति बिंदु परमात्मा को परम धाम में याद करो, तो तुम्हारे विक्रम विनाश होंगे, और तुम्हारे विक्रम विनाश होंगे, तुम पावन सत्व प्रधान बन जाओगे। तो करंट आने लगेगी, करंट आएगी तो क्या होगा, तुम क्या हो जाओगे, तुम्हारे विक्रम विनाश होंगे, तुम पावन सत्व प्रधान बनोगे, और फिर तुम दूसरों की सेवा कर सकोगे। तो बाबा हमको अपनी गोदी में बिठाता है, पहले शूद्र से ब्राह्मण बना के अपनी गोदी में बिठा के हमको राजयोग सिखाता है, और राजयोग सिखा के हमको क्या बनाता है, पावन सत्व प्रधान फरिश्ता बनाता है। अब हम इस पे आते हैं, विक्रमाजीत कैसे बने, अब इसमें हमें क्या करना है विक्रमाजीत बनने के लिए। अब जब भी हम बैठे चलते फिरते, ये चलते फिरते करने वाली बात है, अपने आप से बात करें, ये चार बातें हैं हमारी बुद्धि में जो फंसी हुई है, इसमें बुद्धि और मन में चार बातें फंसी हुई है। कौन सी बात फंसी है? देह, मैं देह हूं, देह के संबंध, बुद्धि दिल में चले गए, कहां पे चले गए, दिल में, देह दिल में चली गई है, देह के संबंध दिल में चले गए, माँ बाप, भाई बहन, युगल, पत्नी, बच्चे, सब, देह के स्वभाव, देह के स्वभाव ये पांच विकार हैं, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार। देह के संस्कार ये 10 बच्चे हैं, आलस्य, अलबेलापन, जो बताए 10 बच्चे, ठीक है, ये भी अंदर चले गए। और देह के पदार्थ, हमारी जो देह के पदार्थ है, प्रॉपर्टी है, पैसा है, कपड़े हैं, मनी है, जो भी पैसे ज्यादा, वो भी दिल में चले गए। इन चारों कुछ भी होता है तो हमारा क्या होता है, विवेक कंफ्यूज हो जाता है, बुद्धि काम नहीं करती, चित्त भारी होता जाता है, स्मृति खराब हो जाती है, बुद्धि मन मन क्या हो जाता है, दुखी हो जाता है, वृत्ति एकदम भटक जाती है, भावनाएं खराब, संकल्प खराब, देह बीमार है ना। तो अभी हमको क्या करना है, इसका सिंपल सा फॉर्मूला है, चलते फिरते अपने आपसे बात करो, मैं क्या मैं देह हूं क्या, ये देह तो नहीं हूं, ये तो मैं अभी चला जाऊं तो क्या होगा, देह यहीं रह जाएगी, देह के संबंध है क्या, इनमें देह के संबंध कुछ आने वाला है क्या मेरे साथ, कोई जाने वाला नहीं है। देह के पदार्थ जाने वाले हैं क्या, जाने वाले नहीं, देह का स्वभाव संस्कार साथ में जाएंगे, जिस दुनिया में जा रहा हूं परमधाम में जाने वाले हैं, आलस जाएगा, अलबेलापन जाएगा, वो तो पवित्र देश है, इनमें से कोई चीज जाएगी नहीं, ना देह के स्वभाव ना देह के संस्कार, पवित्र देश, सब कुछ यही छोड़ के जाना पड़ेगा। तो चलते फिरते अपने आप से बात करो, एबीसीडी को रिवाइज करो, रियलाइज करो, जितना अधिक एबीसीडी को रिवाइज और रियलाइज करते हैं तो क्या होता जाएगा, मैं आत्मा हूं, अति सूक्ष्म ज्योतिबिंदु, अति सूक्ष्म ज्योतिबिंदु परमात्मा के संतान हूं, महसूस करते जाओ, ठीक है, मेरा उससे एक संबंध, मां का संबंध है, शिव बाबा ब्रह्मा के थ्रू मुझे मां की पालना और प्यार दे रहा है, और जन्म देते बाबा ने क्या किया, मुझे दिव्य बुद्धि की लिफ्ट दे दी है, वरदान के रूप में, गिफ्ट के रूप में, जैसे गिफ्ट देते ना जन्म की, तो बाबा ने हमें क्या गिफ्ट दिए, दिव्य बुद्धि रूपी लिफ्ट दे दी है, लिफ्ट में बैठो, कहां पहुंच जाओ, बटन दबाओ, कौन सा बटन दबाना है, मैं आत्मा हूं, कहां पहुंच जाएंगे, परमधाम में, परमधाम नहीं, बाप दादा की गोद में पहुंच जाएंगे, सूक्ष्म वतन में नहीं पहुंचेंगे, सूक्ष्म वतन में नहीं, कहां पहुंचते हैं, सूक्ष्म वतन में बाप दादा बैठे गोद में पहुंच जाते हैं, ये लिफ्ट कहां उतारते, सीधी सूक्ष्म वतन नहीं उतारते, कहां उतारती है, बाप दादा की गोद में उतारते, सीधा जमीन में नहीं उतारती है, मां की जिस पे नहीं, गोद में उतारती है, और फिर गोद में पहुंच जाओ, बाबा फिर आपको बाबा से रूहानियत करो, फिर बाबा से बाप का प्यार, फिर बाप का संबंध, बाप के रूप में क्या करता है बाबा, ज्ञान का तीसरा नेत्र दे देता है, ऐसे तो आप बाप से बहुत सारी प्राप्तियां होती हैं, तो ज्ञान का तीसरा नेत्र माना, अब बाप आप जब ज्ञान का तीसरा नेत्र मिला तो अब आप अपने को आत्मा देख सकते हो, बाबा की गोद में बैठे हो सूक्ष्म सूक्ष्म बॉडी के साथ, और अपने आप को देख रहे हो, शिव बाबा को देख, शिव बाबा के अंदर है ना, बाप दादा के अंदर, ब्रह्मा बाबा को देख रहे हो, सूक्ष्म वतन को देख रहे हो, वहां से परम धाम को देख रहे हो, वहां से सुखधाम को बाबा दिखा रहा है, बाबा की गोद में बैठे हो ना, दिखाता है बाबा, बाबा फिर कर्मों की गुह्य गति बताता है, फिर बाबा से पूछ सकते हो, रूढ़ ध्यान करो, बाबा मेरे को ना ऐसा ऐसा मैं योग करता हूं, सिर दर्द हो जाता है, बाबा मैं अमृत योग करना बैठता हूं नींद आ जाती है, बाबा मेरे को ऐसे संकल्प चलते हैं, बाबा मेरे को ऐसा ऐसा वो व्यक्ति फला व्यक्ति ऐसे ऐसे बोलता है, बात करो, बाबा कहेगा बच्चे तुमने वो व्यक्ति ऐसे ऐसे बोलता है ना, तुमने ऐसे ऐसे बोला हुआ है उसको, बाबा आपको एक एक बात का आंसर देता है, बच्चे तुम इसकी चिंता नहीं करो, है ना। तो बाप के मन में जो भी प्रश्न है बाबा से पूछते जाओ, टीचर के रूप में बाबा क्या करता है, त्रिकालदर्शी बना देता है, सृष्टि के आदि मध्यंत का ज्ञान देता है, फील करो बाबा कैसे अनादि स्वरूप आदि स्वरूप मध्य स्वरूप ब्राह्मण स्वरूप परिष्ठा स्वरूप, ये पांच स्वरूप की ड्रिल है ना बाबा आपको सिखा रहा है, बाबा गोद में बैठे बैठे करते रहो, कि मैं अमृत वाला कैसे करता हूं मैं आपको बता रहा हूं, ठीक है। फिर टीचर के बाद सतगुरु के रूप में, सतगुरु के रूप में बाबा त्रिलोकीनाथ बना देता है, मतलब त्रिलोकीनाथ माना हमारे जो विक्रम विनाश करके हमको तीनों लोकों में आने जाने की मल्टीपल एंट्री वीजा दे देता है ना, जितनी बार ऊपर जाओ जितनी बार कोई रुकने वाला नहीं है आपको, जितना समय रुकना वहां रुक जाओ, ठीक है। कौन सा वीजा मिलता है, मल्टीपल एंट्री वीजा, कितने साल का है ना, जब तक विनाश हो, ठीक है ना, मल्टीपल एंट्री वीजा मिल जाता है, ठीक है, सतगुरु के रूप में। और बंधु के रूप में बड़ा भाई क्या करता है, सारे बोझ मुझे दे दो, तुम छोटे अभी छोटे से हो, तुम सारे बोझ अपने दे दो मुझे, सारे बोझ ले लेता है। सखा के रूप में जो बातें मैं किसको नहीं बता सकता हूं, सारी बातें उसको बता देता हूं, बाबा मुझसे गलती होती है, बाबा मेरी आंख ऐसे होती है, बाबा मेरे को मन में ये फीलिंग आती है, बाबा मेरे को ऐसा होता है, जो बातें मैं किसको नहीं कह सकता बाबा को बताता हूं, दोस्त के रूप में बता देता हूं। साजन के रूप में बाबा क्या करता है, दैवी गुणों से जा देता है, सत्यता पवित्रता निर्भयता अंतर्मुखता एकाग्रता एकांतवासी एकाग्रता एक नामी व्यर्थ से एक नामी एक रस्थिति सरलता नम्रता उदारता, मैं बता दू 56 गुण एकदम गिन दूंगा पर गिनने का फायदा नहीं, ठीक है, आप आराम से किताब में देख लेना, ठीक है, राइट। तो ऐसे दैवी गुणों से ज्यादा साजन का क्या काम होता है, सजने के लिए गहने लाता है कपड़े लाता है ना, हमारा साजन क्या करता है, दैवी गुणों से श्रृंगार करता है, ठीक है। और सज्जन के रूप में आत्मा में 5 कीड़े लगे हुए हैं, कौन कौन से, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार के, है ना, बीज में कीड़े लगा हुआ है, ठीक है। कीड़ा कहां से लगे? दिल में चला गया ना, इन कीड़ों को ऑपरेशन करता है ना, ऑपरेशन कर निकालता है उनको, है ना। ये सिर्फ बाबा, और कोई नहीं कर सकता, सिर्फ बाबा करता है, इन कीड़ों को निकालता रहता है ना। सर्जरी सर्जरी करता है आत्मा की, मनमाना भाव की दवाई डालता रहता है, और उसमें क्या करता है, कीड़े, जैसे मनमाना भाव की दवाई डालता है ना, कीड़े बाहर निकल के भागते हैं ना, कि तो जैसे जैसे मनमाना की दवाई हटाओ तो क्या होता है, वापस कीड़े घुस जाते हैं ना, राइट। तो ये फिर बाबा ऑपरेशन करता रहता है, और बच्चे के रूप में ये नो संबंध बाबा के साथ अनुभव करते रहो, यही योग है, यही योग है। नहीं, योग तो हमारा लगता है ना चीजों से, किससे लगता है? अपने देह से लगता है, अपने देह के संबंधों में लगता है, देह के स्वभाव संस्कारों में लगता है, देह के पदार्थों में लगता है। मुझे चाय पीने की आदत है ना, चाय चाय चाहिए, चाय से योग लगता, नहीं लगता, नहीं लगता है ना, है ना। मुझे आइसक्रीम चाहिए, आइसक्रीम कितना अच्छा योग लगता है ना, है ना। मतलब खाने पीने चीजों से लगता, नहीं लगता, सब चीज से योग लगता है ना। तो ये योग लगता है हमारा, बुद्धि में अपनी कोई संबंध है उसका, बार बार निकलेंगे यहां से टेलीफोन, कैसे हो, है ना, योग लगा हुआ, नहीं लगा हुआ। यहाँ बाबा से बैठे योग नहीं लगता है, वहां बाहर निकलता ही उससे योग लगता है ना, यहाँ बैठे बैठे उसी से योग लगा रहता है, जो बुद्धि में है, दिल में, उससे योग लगता है ना। तो ये अपने चलते फिरते अपने आप से बात करो, डी4 ड्रामा। तो इस तरह से जब करते हैं तो हमारे क्या होता है, सूक्ष्म हमारा कॉन्शियस माइंड एक्टिव होता जाता है, हम प्रेजेंट में रहने लगते हैं, और सबकॉन्शियस माइंड के विचार कम होते जाते हैं। 15 से 10 विचार हुए, हमारी कॉन्शियसनेस ऊपर उठ गई, हम कहां पहुंच गए? इस आम दुनिया में जितने लोग हैं वो कैसे हैं? देह देह के संबंध, देह के स्वभाव संस्कार में खोए हुए हैं। जैसे हम ऊपर उठते हैं, हमारी कॉन्शियसनेस ऊपर उठ गई, हम कहां पहुंच गए? धरती से ऊपर उठ गए। फिर जैसे हमारे 8 विचार होते हैं तो क्या होता है, शांति महसूस होने लगती है। मतलब अभी सिर्फ कॉन्शियस माइंड के विचार रह गए, सबकॉन्शियस खत्म हो गया, सबकॉन्शियस चुप हो गया सबकॉन्शियस। तो हमारे कॉन्शियस विचार बढ़ाने हैं, सबकॉन्शियस कम करने, ये एबीसीडी को रिवाइज और रियलाइज करो, रियलाइज में अनुभव करो, फील करो, खाली बोलो नहीं अंदर, फील करो मैं ये हूं, मेरा ये है, एक एक संबंध को अनुभव करो। D4 ड्रामा, जो हुआ अच्छा हुआ, जो हो रहा अच्छा, जो होने वाला बहुत अच्छा। दुनिया में क्या है, जो हुआ ना मेरे साथ बहुत खराब हुआ, अब मेरी बात मत पूछो, नहीं बोलते ऐसे हम, हमारा एबीसी है तो डी है, अगर एबीसी नहीं तो डी है क्या? फिर तो डी जंजाल है, चक्रव्यूह है, जो हो रहा है अरे क्या बात पूछ, बात बहुत बुरा हो रहा है मेरे साथ, क्या होने वाला मुझे पता नहीं, ठीक है। हम क्या बोलते हैं, जो हुआ अच्छा हुआ, जो हो रहा अच्छा, जो होने वाला बहुत अच्छा, नहीं। तो ये ड्रामा का पॉइंट हमको कितना अच्छा बनाता है, इससे पवित्रता आती है, पवित्रता से शांति आती है। शांति माना सिर्फ कॉन्शियस माइंड रह जाता है 8 विचार, और जब 6 विचार हो जाते हैं तो क्या होता है, 6 विचार हम और ऊपर उठ गए, 6 विचार माना अभी मेरे को रियलाइज होने लगता है, इसने जो मेरे को ये बार बार इसने ऐसा बोला क्या ना, इसको मैंने ऐसा बोला, मैंने गलत बोला, मतलब क्या होता है बेसिकली। फिर जब हमारे विचार कम हो जाते हैं, कॉन्शियस माइंड के विचार, तो हमें सबके प्रति क्या होता है, हमारा अनकंडीशनल डिग्निफाइड केयर हम सबकी कर पाते हैं, अनकंडीशनल डिग्निफाइड केयर। अनकंडीशनल माना बिना किसी शर्त के, कोई कैसा भी है, अच्छा बुरा, कैसे इसने दुख दिया, कुछ किया, सबके प्रति आत्मिक भाव है ना, वो वाला, और डिग्निफाइड सम्मान वाला केयर, सबकी देखभाल कर, इसको लव कहते हैं, इसको प्यार कहते हैं, ये है रूहानी प्यार। हर बच्चे को अपनी मां का प्यार याद आता है, बाप का प्यार कभी याद आता है क्या? एक 60 साल का आदमी हो गया, वो भी तब भी बीमार होगा तो क्या करेगा, हाय मां बोलता है ना, कभी बोलता है हाय हाय बाप बोलता है क्या? क्योंकि उसकी मां उसके लिए अनकंडीशनल उसको प्यार दिया है। वो कैसा भी था, बीमार था, कमजोर था, दुखी था, कैसा भी था, कहना मानता था, नहीं पढ़ता, पढ़ाई करने की पढ़ाई करता था, नहीं करता, मां तब भी उसके लिए खाना बना के देती थी, नहीं, और मेरा राजा बच्चा है, मेरा मेरी आंखों का तारा है, मेरा चांद है, मेरा सूरज है, नहीं, कोई इसका बाप ने कभी कहा सूरज है तू चांद है? 70 साल का आदमी हो जाता है, मरने के टाइम नजदीक आता है तो भी हाय मां हाय मैं करता है, कभी करता है हाय पत्नी बोलता है क्या? या कोई औरत लेडी हो 70-80 साल की बूढ़ी हो, कभी बोलेगी हाय पति? बोलेगी? कभी नहीं बोलेगी, वो भी हाय मां बोलती है, क्योंकि अनकंडीशनल लव, अनकंडीशनल डिग्निफाइड। तो रूहानी प्यार से वो रूहानी अतिंद्रिय सुख की अनुभूति होती है, और अतिंद्रिय सुख की अनुभूति होती है तो हम इस दुनिया से ऊपर उठ जाते हैं, क्योंकि ड्रामा कहां तक है, ड्रामा इस संसार में है। तो ये दुनिया 4 संकल्पों तक की दुनिया है, और जैसे ही हमारे 3 संकल्प होते हैं, हम इस दुनिया से परे चले जाते हैं, हम सूक्ष्मतम में पहुंच जाते हैं। एबीसी क्या है? आत्मा बाबा कनेक्शन। तो हम कहां पहुंच गए? सूक्ष्मतम। सूक्ष्मतम में आपको ये नहीं बैठ के कोई अंदर से ऐसे फील करो, विजुअलाइज नहीं करना है, हमारे यहाँ कहते हैं इमेजिन करो, विजुअलाइज करो, ये गलत वर्ड है। बाबा ने कभी नहीं कहा, बाबा ने कहा सर रियल 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 को रियलाइज करो, रियल को रियलाइज करो, ऊपर तो आप सूक्ष्म में पहुंच जाओगे। खाली दो संकल्प रह गए तो क्या होगा? दो माना ए और बी, माना मैं बाबा का, बाबा मेरा। आज बाबा ने कहा ना मुरली में, याद है बाबा कहा ज्ञान वाली पार्टी से, है ना, दिल तक नशीन, दिल तक नशीन, है ना, बाबा कहा सब बातों की दवा, हर बात हल हो जाती है, हर परिस्थिति का हल है, क्या चीज है? बाबा। तो ए और बी, ए और मन आनंद, मैं बाबा का बाबा। तो आप क्या महसूस करेंगे? बाबा की गोद में पहुंच गया, मैं तो ऐसे ही योग करता हूं, ठीक है, चलते फिरते ऐसे योग होता है ना, तो बाबा की गोद में पहुंच गया, अब बाबा से अपनी बातचीत, वो नो संबंध अनुभव कर रहे हैं, ठीक है। योग शुरू कैसे करते हैं हम लोग? फिर बाबा की गोद में पहुंच गए, अब फिर बाबा की याद में खो गए, सारे सारे क्वेश्चन खत्म हो गए, बाबा से एक एक संबंध की अनुभूति हो गई, बाबा खाली बाबा रह गया, मैं भी भूल गया मैं कौन हूं, बाबा की, बाबा के प्यार में लवलीन हो गया। अब क्या होता है? सिर्फ बाबा रह गया, तो बाबा खाली रह गया तो क्या पहुंच गया, क्या हो गया? एक संकल्प हो गया, तो कहां पहुंच गया? परम धाम। तो एक से तीन संकल्प की दुनिया सूक्ष्म वतन है और एक से कम संकल्प की दुनिया परम धाम है। तो बाबा की याद में खो जाना ही क्या है? परम धाम में पहुंच जाना। इसलिए बाबा सब 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 खजानों की चाबी है। बाबा कहते हैं, बाबा बार बार बोलता, बस मेरा बाबा कहो एक बार दिल से कहो, क्या हो गया? स्वर्ग में पहुंच गए, एक सेकंड का ज्ञान है ना, तो मेरा बाबा स्वर्ग में पहुंच गए। तो एक संकल्प माना एक एक से भी कम, 0.9 संकल्प हो गया। अब संकल्प कोई चल ही नहीं रहा, अच्छा ऊपर लाल लाइट है क्या? आप निरंजन में आपने देखा है कि लाइट ऊपर लाल लाइट होती है परम धाम में? क्या नहीं, वहां लाल लाइट होती है? अब आप अपने आप इमेजिन करते हो, लाल लाइट नहीं होती है वहां, ठीक है, गोल्डन लाइट बोलते हैं ना, गोल्डन लाइट वहां नहीं है। आत्मा आत्मा की कोई लाइट नहीं है, आत्मा कोई ऐसा, तो परम धाम की लाइट क्या होगी एक्चुअली? क्या गोल्डन एज लाइट है? गोल्डन एज गोल्डन गोल्डन एज जैसे में गोल्डन एज स्थिति है, वहां कोई संकल्प ही नहीं है, संकल्प सिद्ध है वहां पर, तो गोल्डन एज लाइट है ना, गोल्डन लाइट नहीं, ये एज लिखना भूल के लगता है, तो गोल्डन लाइट मतलब शक्तिशाली सर्वशक्तिवान, वो एक रूपक है, सर्वशक्ति सर्वशक्तिमान की स्थिति का रूपक है, वो लाल रंग दिखा देते हैं। मैंने आज तक मैं परमधाम में बहुत बार गया हूं किंतु लाल लाइट नहीं होती। मैंने बाबा से पूछा एक दिन सूक्ष्म वतन में, इमेजिन नहीं करना है कुछ, रियल को रियलाइज करना है, सत्य को रियलाइज करना है। सत्य क्या है? मैं आत्मा हूं, परमात्मा की संतान हूं, मेरे संबंध उसके साथ डी फॉर ड्रामा, जो हुआ अच्छा, ये ड्रामा, ये सत्य है। और जितना इसके जब एक संकल्प से भी कम संकल्प में खो गया बाबा की याद में, तो वो परमधाम की स्थिति है। और जब से 0.9 0.8 मत संकल्प एक से कम हो जाते हैं, तो ये हाई फ्रीक्वेंसी मेमोरीज खत्म डिलीट होने लगती हैं, 40 वाली गुस्से वाली मेमोरीज, काम विकार की मेमोरीज, लोभ की मेमोरीज, मोह की मेमोरीज, अहंकार की मेमोरीज, जो किसी मनुष्य के साथ हम करते आए हैं वो डिलीट होने लगती है। अब कितनी देर हम रहते हैं वहां पर, इसके आधार पर कितनी कितनी हम डिलीट कर सकते हैं। हम रहते ही वहां पर 5 सेकंड है, कई लोग तो योग सुबह अमृत करना बैठते हैं, देखता हूं कई बार करने सामने, कई बार बैठ के योग कराते हैं ना, कई लोग ऐसे करते हैं, कई बार हम लोग तो अपने योग में खोए रहते हैं, कभी कभी देखते हैं तो लोग कैसे बीच में ध्यान हमारा वैसे होता है ना, तो हम देखते हैं थोड़ी देर में ऐसे पूरे झुक जाते हैं, फिर अलर्ट होते हैं, फिर थोड़े अलर्ट होते हैं, फिर और लास्ट में जब 45 मिनट होने के नजदीक होते हैं, फिर जब मैं आंख खोले तब हम लोग देखते हैं कि भाई क्या हो रहा है, और आधे लोग तो मुंह खोल के सोए होते हैं, मुंह में लड्डू आएंगे उनके ना। तो ये अमृत वेला होता है क्या? ऐसा अमृत वेला नहीं होता, ठीक है। तो हमको क्या करना है, मतलब परम धाम की स्थिति में पहुंचने से फिर विक्रम विनाश होता है, ठीक है। तो हमारी हाई फ्रीक्वेंसी मेमोरीज तब डिलीट होती है, और सबसे अच्छा टाइम अमृत वेला है इसके लिए, ठीक है, राइट। तो इस तरह से हमारी इसका रिजल्ट क्या होगा, क्या पता, कैसे पता लगे हमारे विक्रम विनाश हुए? जिस व्यक्ति को देख के कल गुस्सा आता था, जिस व्यक्ति को देख के हमें कुछ मोह आता था, लगाव होता था, प्रभाव में उसके आके बात करते थे हम लोग, आज वो व्यक्ति मिलेगा ना, आज वो व्यक्ति मिलेगा, आज उसको देखे याद ही नहीं आएगा इसको हमने कल गुस्सा किया था, इस व्यक्ति को देख के हमें ऐसी फीलिंग आई थी, उसको भी फीलिंग नहीं आएगी। अब इसका मैं एक बात और बताता हूं आपको, जब हमारे 15 संकल्प हैं, तो हमारा सूक्ष्म शरीर हमारे शरीर स्थूल शरीर के बराबर है, साइज उसका बराबर है। जब हमारे 8 संकल्प हो जाते हैं, तो हमारा 6 इंच का ऑरा बन जाता है, मतलब हमारा सूक्ष्म शरीर इस शरीर से 6 गुना 6 इंच बड़ा हो जाता है, सूक्ष्म शरीर 6 इंच इससे बड़ा हो, इस शरीर से बड़ा हो जाता है। जब हमारे 6 संकल्प हो जाते हैं तो हमारा लगभग ये 4 फुट का ओरा हो जाता है। कितना हो जाता है? 4 फुट, मतलब यहां से 4 फुट। तो रूहानी प्यार की स्थिति क्या है? 4 फुट तक आपके आसपास क्या रहेगा, कोई व्यक्ति उसके अंदर आएगा तो उसे क्या महसूस होगा? उसको भी शांति, प्यार, खुशी की अनुभूति होगी। 4 फुट तक, 4 फुट के बाहर गुस्से में आएगा, 4 फुट के अंदर आ जाएगा तो क्या होगा? रूहानी प्यार की अनुभूति करेगा। और जो 4 के उसमें रहेगा, 4 संकल्प में रहेगा, उसको इसके बाद 4 के बाद 6 के बाद 5 आएगा, 5 में 16 फुट और 4 पे 64 फुट। ठीक है, 64 फुट तक, मतलब अगर कोई हॉल इतना बड़ा हो 64 फुट वाला, उसमें कोई आ जाएगा ना तो क्या होगा? वो उसको शांति, प्यार, खुशी अनुभव होता रहेगा। इससे देखा होगा जो भी प्यारे योगी होते थे ना, उसके जंगल के आसपास कोई आके, कोई शेर होगा, भालू होगा, कुत्ता बिल्ली भी आके कैसे बैठते थे? पालतू कुत्ते की तरह के बैठ जाते थे। कभी किसी सन्यासी को खाया किसी ने? भालू खा गया क्या? भालू ने अटैक किया है उसको? शेर ने अटैक किया? कभी अटैक नहीं, क्योंकि उनके वाइब्रेशन से ऐसा होता है। हमारे यज्ञ में क्या होता है, लोग बाहर से आते ही शांति, प्यार, खुशी अनुभव क्यों करते हैं? क्योंकि वो वाइब्रेशंस, हमारे जो ऑराज हैं, हमारे आभामंडल आसपास सब बिखरे हुए हैं, उसमें आकर के वो शांति, प्यार, खुशी की अनुभूति करते हैं। यहां मधुबन क्या है? अतिंद्र सुख का सागर है ना, ऐसी अनुभूति ऑटोमेटिक होती है। ठीक है, तो ये हमारा, इससे हमारा आभामंडल, ये हमारा कवच है, ये हमारा कवच बन जाता है। इससे हमें दूसरों से, आसपास के लोगों से, उनके वाइब्रेशंस, कोई हमको मारने में आए तो क्या होगा? मैं इसमें बैठा हूं अपने बाबा की याद में, सूक्ष्म वतन में बाबा की गोद में बैठा हूं तो क्या होगा? ऐसे कितने अनुभव बाबा के, मम्मा के, कितने अनुभव आपने पढ़े होंगे, सुने होंगे। बाबा मम्मा को लोग मारने आते थे या कुछ करने आते थे तो क्या होता था? उनको लाइट ही लाइट नजर आती थी, किसी को अपना इस्तेव नजर आता था। कैसे? बाबा के पास कमरे में आते ही लोग बदल जाते थे। कैसे? इसके आधार पर। ठीक है, और आपके अंगों की बीमारियां भी खत्म होने लगती हैं जब इतनी एनर्जी भर जाएगी। बीमारियां क्यों होती हैं? उन अंगों में इतनी एनर्जी नहीं रहती, इसलिए अंग बीमार होने लगते हैं। और जब इतनी एनर्जी भरी रहेगी तो क्या होगा? भले पुराना शरीर है, तमो प्रधान शरीर है, तत्व सारे बेकार हो चुके हैं, तो भी ये गाड़ी चलती है नहीं? तो इस तरह से हमारे विक्रम विनाश होते होते धीरे धीरे रोज हम विक्रम विनाश करते रहते हैं। और फिर बार बार इसके लिए हमें 4 नियम, 4 मर्यादाएं, जो आपको और भाई बहन भी बताएंगे, 4 ब्राह्मणों के नियम इसके लिए मेंटेन करना, क्योंकि हमें रिटर्न जर्नी है। 84 जन्म से हमको वापस 21वें जन्म तक जाना है, 23वें जन्म के पाप कर्म विनाश करने, तो एक एक जन्म आएगा, सीक्वेंस वाइज आएगा, है ना? तो इसमें हमें 4 नियम, 4 मर्यादाओं को पकड़ के रखना है। उन पे बाबा ने नियम दिए, हमको नियम धारणाएं, ये मर्यादाएं दी हैं, इन पे एक्यूरेट चलते रहेंगे तो हमारे विक्रम विनाश होते रहेंगे। यही माया प्रूफ की ड्रेस है, नहीं तो हम माया के चक्कर में फंस गए तो प्रॉब्लम हो जाएगी। क्या क्या 4 नियम है? पहला नियम है अमृत वेला। सच्चा ब्राह्मण वो जो कभी अमृत वेला मिस ना करे। पर अमृत वेला कौन कर सकता है? जो सोने के टाइम पे सोएगा और सोने के पहले लेटर लिखेगा, बाबा को अपना सच्चा सच्चा पोता मेल देगा। लेटर लिखो बाबा को, आज सुबह से लेकर शाम तक हमने क्या, कितना हम श्रीमत पे चले, कितना मनमत परमत पे चले, कहां पे हमसे गलतियां हुई, कहां में फीलिंग आई, लिख दो सच्चा सच्चा, लिख के साइन कर दो। साइन करके बाबा को, बाबा का ट्रिपल जो फैक्स नंबर है ना, हॉटलाइन फैक्स है, क्या है? 000। मैं आत्मा 0, मेरा बाप 0, आसार दिन में जो मल्टी बीता वो मल्टीप्लाइड बाय 0। क्या आंसर हो गया? लेटर बाबा के पास पहुंच गया, फाड़ के डस्टबिन में डाल दो, तखना मत संभाल के, कोई दूसरा ना पढ़े, फाड़ के डस्टबिन में डाल दो। ठीक है, चार्ट भरो, फिर मुरली पढ़ के सो जाओ, 9:30 तक सो जाओ। ठीक है, जो ऐसा करके सोएगा उसकी 6 घंटे की नींद में एकदम परफेक्ट फ्रेश हो जाएगा। जो लेट सोएगा कम से कम 3 घंटे, 3 साइकिल नींद की आवश्यक है, तब हम अमृत वेला योग पावरफुल कर सकते हैं। और जो हम रात को संकल्प करके सोएंगे वही सुबह उठते ही संकल्प आएगा, गुड नाइट की बाबा को, उठते गुड मॉर्निंग की, और बैठ गए, मुंह हाथ धो के ब्रश करके बैठो, अच्छी क्रीम लगा के बैठो चेहरे पे ना। किसी बड़े आदमी से मिलने जाते कैसे जाते हो? बाल बाल कॉम करके बैठो, ऐसे नहीं कि बैठे उठे। और कई लोग तो ऐसे बस यूं किया, मुंह धोते भी ढंग से नहीं है, यहां आंख पे यूं पानी लगा लेते थोड़ा सा, चलो ऐसे करके बैठ गए, फिर वो झटके लेते रहते हैं, क्योंकि मुंह हाथ धो के फ्रेश होके कुरला करके ब्रश करके बैठो और क्रीम लगा के बैठो, है ना? तो बाबा से क्रीम लगा के नहीं बैठो तो क्या होगा? चेहरे पे आपको ना रौनक नहीं आती है ना, है ना? बड़े आदमी से मिलने जा कैसे जाते हो? मैं तो बहुत तैयार होकर बैठता हूं, ड्रेस भी बदल के बैठता हूं, सबसे बड़ी हस्ती से मिलने जा रहे हो ना, तो रात वाली ड्रेस पहन के बैठोगे क्या? ड्रेस भी बदल लो, ठीक है? जो ड्रेस बदल के योग करते हैं, हाथ उठा देता हूं, ड्रेस बदल के, रात वाली ड्रेस में नहीं, थोड़े से चार पांच लोग हाथ उठा रहे, कल सुबह से सब ड्रेस बदल के योग करना, ठीक है? तो अमृत वेला पावरफुल तब होगा, शुरुआत एबीसीडी से कर दो, ठीक है? और फिर पहुंच जाओ, रास्ता बड़ा सिंपल है, कहीं देखने की आवश्यकता नहीं है, सीधे ऊपर पहुंच जाओ, ठीक है? परमधाम सीधे पहुंच के दम लो, है ना? फिर वहां पर बैठ के अपने विक्रम विनाश करो, फिर बाबा की वापस गोद में आ जाओ, फिर ऊपर चले जाओ, फिर नीचे आ जाओ, फिर ऐसे सूक्ष्मतम परमधाम, सूक्ष्मतम परमधाम, ठीक है? धीरे धीरे वो अभ्यास होते होते परमधाम में ज्यादा देर रहने की आदत पड़ जाएगी। तो विक्रम विनाश हो गए, फिर पांच किताबें। तो अमृत वेला सबसे पहले इंपॉर्टेंट बात है, मैं जो करता हूं मैं वो बता रहा हूं, ठीक है? अमृत वेला करते ही मैं क्या करता हूं, घर में आती पांच किताबों से एक एक पॉइंट पढ़ता हूं। पहला अमृत वेला, दूसरा संपूर्ण पवित्रता, तीसरा कर्मयोगी फरिश्ता, चौथा विधेयी अवस्था, पांचवा शुभ भावना शुभ कामना। ये पांच किताबें मिलती हैं लिटरेचर स्टॉल पे। अमृत वेला, संपूर्ण पवित्रता, कर्मयोगी फरिश्ता, विधेयी अवस्था और शुभ भावना शुभ कामना। ये पांचों किताबें अव्यक्त बापदादा के महावाक्य हैं, कुछ ऑफिसी देदारी के नहीं है, बापदादा के महावाक्य हैं, ठीक बात है? तो ये पांचों किताब से एक एक पॉइंट 10 मिनट लगते हैं पढ़ने में, पढ़ के फिर मैं नहा धो के तैयार हो जाता हूं, ठीक है? तो मतलब पहला अमृत वेला सबसे इंपॉर्टेंट है, और इस तरह से करें, विधि पूर्वक करेंगे तो आपको बहुत आनंद आएगा, ठीक है? ये दीदी हमारी बताएंगे, ठीक है? तो समझिए, फिर उसके बाद मुरली, सेकंड जो है वो मुरली है। मुरली जो है बाबा की सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, और मुरली मोबाइल पे नहीं, सेंटर पे जाके, क्लास में जाके बैठ के मुरली सुनना। हम अमृत वेला योग के बाद मुरली पढ़ते हैं, पहले पांच किताब पढ़ते हैं, फिर मुरली भी पढ़ लेते हैं, मुरली हमारे पास होती है, हम पढ़ लेते हैं, फिर क्लास में जरूर जाते हैं। क्लास में जाके बाबा की याद में बैठ के, बाबा की गोद में बैठ के मुरली सुनते हैं। वो मोबाइल पे सुनते हैं या वैसे, उसका कोई महत्व नहीं है, वो बाबा की गोद में जाके, क्योंकि बाबा खाली ज्ञान नहीं देता है, बल भी देता है, पालना भी देता है। किसी कोई भी बहन बैठ के सुनाए, भाई सुनाए, उसके द्वारा बाबा बल भी दे रहा है साथ साथ, ताकि वो धारण हो जाए। सुनने का खाली फायदा नहीं है, मुरली सुनने के फिर छह स्टेप है। पहले सुनो श्रवण, फिर मनन चिंतन मंथन सिमरण और स्मृति स्वरूप। ये छह स्टेप में हमें मुरली सुननी होती है, सारा दिन उसके ऊपर ये काम है। मतलब शाम होते रात होते होते हमें स्मृति स्वरूप बनना होता है, वो कभी फिर मैं बाद में कभी बताऊंगा, आज क्लास पूरी हो गई, बस मैं यहां। तो मुरली हमें ऐसे सुननी चाहिए बहुत प्यार से। फिर चौथी तीसरी बात है कर्मयोगी, कर्मयोगी बनने का अटेंशन, सारा दिन हमें कर्मयोगी बन कर्म करना है। ये मुरली हमें कर्मयोगी बनना सिखाती है। हम क्या करते हैं, मुरली लव लेटर है ना, जैसे ये बाबा का लव लेटर है, लव लेटर है कि नहीं, लव लेटर ना, तो हम क्या लव लेटर कहां रखते हैं बताओ, क्या रखते हैं? दिल के पास रखते हैं, और दिखा के नहीं रखते हैं, छुपा के, और कैसे कैसे करते हैं, जैसे देखते हैं आसपास कोई व्यक्ति नहीं है तो क्या करते हैं, यूं निकालते हैं, पढ़ते हैं, मुस्कुराते हैं, फिर जेब में छुपा लेते हैं ना, नहीं? जिसको जिसने प्यार किया होगा उसको पता होगा, जो लव लेटर जिनको अनुभव होंगे ना, है ना? तो हमने तो बाबा से किया, देदारी से नहीं किया अभी तक, करने की इच्छा भी नहीं है। तो ऐसे हम लोग मतलब पढ़ा, मुस्कुराए, बाबा ने मेरे लिए कहा, मेरे साजन ने मेरे लिए कहा, और फिर तुम छुपा लेते हैं, और फिर उसी में खोए रहते हैं थोड़ी देर, भले पेशेंट देख रहे हो, वार्ड में हो, आईसीयू में हो, कहीं भी हो, खोए रहते हैं, उसी याद में काम करते रहते हैं। वो कह रहे हैं, कहावत है ना, क्या, हाथ काटे दिल याडे, हाथों से काम करते रहे, दिल वहां लगा रहता है ना। तो ऐसे फिर जैसे मौका मिलता है फिर निकाल लेते हैं, फिर जैसे मौका मिलता है फिर निकाल, दिन में 20 बार 25 बार 30 बार। पूरी पूरी मुरली पढ़ने की बात नहीं है, एक एक लाइन, वरदान स्लोगन एक एक लाइन पढ़ लेते हैं, ठीक है? तो ऐसे बाबा की सारा दिन अटेंशन, यही कर्म योग का बैलेंस हमें सिखा देता है। और सोने के पहले चार्ट भरना, लेटर लिखना, चार्ट भरना, और फिर मुरली पढ़ के सोना। तो ये जो है चार बातें, अमृत वेला, मुरली, कर्मयोगी स्थिति सारा दिन, और चौथी सोने के पहले अपना पोता मेल चार्ट भर के फिर सो जाओ, बाबा की गोद में सोना। बाबा की गोद माना, ये जो हमारा बेड है ना, गैरेज है, ये बॉडी कार है, बॉडी को वहां पार्क किया, और वहां क्या रख दो, घर का है हमारा सूक्ष्मतन, और हमारा बेड कौन सा है, परमधाम, ठीक है? और सॉरी, बेड हमारा है बाबा की गोद। तो चार नियम हर ब्राह्मण को पालन करने चाहिए। ये मोबाइल पे मुरली सुनना छोड़ दो, कौन सा पीएम टीवी पे मुरली सुनना छोड़ दो, वहां पालना नहीं मिलती है। ये एकाग्र बुद्धि हो के हर आदमी जो 9,16,108 में आना चाहता है, वो जो मुरली वो आएगा 9 लाख की माला, 9,16,108 की माला में, जो रोज सेंटर पे आके मुरली सुनता है। मैं कभी बताऊंगा कि कभी टाइम मिलेगा तो बाद में कि 8 में कौन आएगा, 108 में कौन आएगा, 16,108 में कौन आएगा, 9 लाख में कौन आएगा, ठीक है। तो ये आपको ये बाबा ने सब मुरली में बताया हुआ है। तो ये मैं बता दूं, मुरली में जो बाबा का जो 9 लाख में वही आएंगे जो कम से कम एक बार सेंटर पे आके मुरली सुनते हैं, सेंटर पे आके, मोबाइल पे नहीं, पीएम टीवी में नहीं तो उनका जन्म बाद में होगा, 2-3 जन्म लेट होगा। और मुरली में जितने घंटे लेट, ये बाबा ने बताया, जो मुरली में जितने घंटे लेट उतना जन्म लेट हो जाएंगे। फिर चार मर्यादाएं हैं, चार परहेज हैं। पहला पवित्रता, जितना अधिक मनसा वाचा कर्मणा संबंध संपर्क सोपन तक भी पवित्रता बढ़ती जाएगी उतना आपका योग बढ़ता जाएगा। मर्यादाओं के आधार पर योग होता है, मर्यादाओं के आधार पर अमृत वेला होता है, मर्यादाओं के आधार पर आपकी मुरली बुद्धि में बैठती है, मर्यादाओं के आधार पर कर्मयोग सारा दिन रहता है, और मर्यादाओं के आधार पर लेटर लिख सकते हो बाबा को, सच्चाई से चार्ट भर सकते हो, मर्यादाओं के आधार पर बाबा की गोद में सो सकते हो, ठीक है। मर्यादाएं नहीं होंगी तो नहीं सो सकते हो। तो पहला पवित्रता, अवैध संकल्प भी अपवित्रता है, ये ऐसा क्यों करता है, ऐसा क्यों करती, इसने ऐसा क्यों किया, ये अरे ड्रामा में उसका पार्ट है ना, आप क्वेश्चन करने वाले कौन हो, तो ये क्या क्यों कैसे नहीं, ठीक है। तो पवित्रता की डिग्री बढ़ाते जाओ, पहले स्थूल में छोड़ दी, फिर टेलीविजन सबसे बड़ी अपवित्रता है, मोबाइल उससे बड़ी अपवित्रता है, ठीक है। तो जितना इनसे बचो, साधन है यूज करो, पर इसके वश में मत हो जाओ। दूसरी बात, अखबार, अखबार भी अपवित्रता है ना, बाबा ने अभी मुरली में था ना, कल की मुरली में था शायद ना, अखबार में पढ़ते हैं वो क्या क्या चित्र देखते हैं, बुद्धि भटक जाती है ना, परसों की मुरली में था, हैं माइयों के चित्र देखते हैं, माइयों के चित्र देखते भटक जाते हैं ना, तो बाबा ने परसों बताया था। हाँ, फिर उसके बाद है शुद्ध सात्विक भोजन, बाबा की याद में भोजन बनाओ, बाबा की याद में खाओ। देखो पति पत्नी कैसे करते हैं, नई नई शादी होती 4-5 दिन ऐसे करते, उसके बाद नहीं करते, जब क्या करते हैं, वो उसको खाना खिलाता है, वो उसको खाना खिलाते हैं, नहीं ऐसे होता ना, शुरू शुरू की बात है ना, 5 दिन के बाद तो लड़ाई शुरू हो जाती है ना। तो वैसे कहते हैं 4 दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात नहीं, तो ऐसा प्रैक्टिकल सभी का अनुभव होता होगा ना, किंतु बाबा के साथ हमारा ऐसा नहीं है, उसके साथ हमारा कैसा अलौकिक प्यार है ना। तो अपनी थाली लो, बाबा के पास सूक्ष्म में चले जाओ, आप बाबा को खिलाओ, बाबा आपको खिलाए, नहीं थोड़ा समय है ना, तो अभी ऐसा भोजन खाओ, बाबा की याद में खाओ। तीसरा सत्संग, सिर्फ एक सत्य संग, सत्य बाप का संग, बाबा और मुरली का संग, और किताबें पढ़ना, मैगजीन पढ़ना, किसी सन्यासी किताब पढ़ना, रामदेव की पढ़ना, किसी और की बात पढ़ना, बिल्कुल बंद है ना। सत्संग सिर्फ बाबा का और मुरली का संग, बाबा की मुरली है ना, जिसके पास मुरली का जिसने साधन बनाया ना, उसका जीवन एकदम शुद्ध और निर्मल बन जाएगा। मुरली के अलावा मुरली को दिन में 20 बार पढ़ो, 30 बार पढ़ो, 40 बार पढ़ो, 50 बार पढ़ो, 100 बार पढ़ो, मस्त हो जाओ, ठीक है। ये 100% पॉजिटिव टीम है, और ये हमारा सूक्ष्म शरीर कुछ और नहीं है, फरिश्ता कुछ और नहीं, 100% पॉजिटिव टीम से बना हुआ है, एकदम ट्रांसपेरेंट है ना। और फिर चौथी बात है दैवी गुणों की धारणा, कभी भी क्रोध मत करो, एक बार क्रोध किया 3 दिन तक आपको योग नहीं लगेगा, उदास एक बार मूड ऑफ किया 5 दिन तक योग नहीं लगेगा, किसी के प्रति गुस्से की भावना रख ली योग लगेगा ही नहीं। सरलता, नम्रता, उदारता, मधुरता, धैर्यता धारण करो, मधुरता सबसे मीठा बोलना है। तो इन चार परहेज जितने बढ़ाते जाओगे उतना अमृत वेला पावरफुल होता जाएगा, उतनी मुरली अंदर बैठने बुद्धि में बैठ जाएगी, और जितना उतना अधिक आपका क्या होगा, कर्मयोगी स्थिति सारा दिन बनी रहेगी। और सोते समय सच्चाई से, कई लोग चार्ट भरते हैं सच्चाई से नहीं भरते हैं, लेटर भी लिखते हैं सच्चाई से नहीं लिखते हैं, उनको पता नहीं लगता हम गलत क्या कर रहे हैं ठीक क्या कर रहे हैं, विवेक नहीं होता, परखने की शक्ति नहीं होती, निर्णय करने की शक्ति नहीं होती है। तो सच्चाई से लेटर लिखना, सच्चाई से चार्ट भरना, और फिर बाबा की गोद में सो जाना, तो फिर चार नियम अच्छे से निभा सकेंगे। और फिर हमारा हम बैठते ही, हम जहां बैठेंगे बस बैठे और योग लग गया, बैठे और परमधाम पहुंच गए, बैठे और सूक्ष्म वतन में पहुंच गए, चलते फिरते उठते बैठते हमारी अभ्य स्थिति बन जाएगी। तो फरिश्ता स्थिति माना, जिसका फरिश्ता माना, जिसका 100% माइंड कॉन्शियस है, सबकॉन्शियस माइंड नहीं होता उनका, फरिश्तों का सबकॉन्शियस माइंड नहीं होता, फरिश्तों का अनकॉन्शियस माइंड भी नहीं होता। अनकॉन्शियस माइंड कहां से बनता है? 63 पास के पिछले जन्मों के पाप कर्म है ना, वो 63 जन्म में रहते हैं, वो अनकॉन्शियस माइंड में रहते हैं, उसका असर बुद्धि पे रहता है। बुद्धि पे मैं कैसे मतलब, वो हमारे घर पे उसके अनुसार हमें संबंधी मिलते हैं, मां मिलती है, बाप मिलता है, भाई बहन मिलते हैं, दोस्त मिलते हैं, और वो हम चाह करके भी अपने आप को बदल नहीं पाते। अनकॉन्शियस माइंड का असर है ना, पिछले पाप कर्म में मैं जाता हूं बाबा के ज्ञान में जाके समर्पित हो जाऊं, मां बोलती नहीं जाना है, पिताजी बोलते नहीं जाना है, दोस्त बोलते पागल हो गया है, तो वो अनकॉन्शियस पिछले जन्मों के संबंध मुझे रोकते हैं ना, तो वो जो अनकॉन्शियस माइंड भी खत्म हो जाता है। जब ऐसे विक्रम विनाश करते हैं कि किसवें जन्म पे पहुंच जाएंगे, तो फिर क्या होगा, हमारा माइंड 50% ज्यादा सातों गुणों से भर जाएगा और तब हमारे अकर्म हो जाएंगे, ठीक है, फिर हमारे विक्रमाजीत बन जाएंगे, फिर कर्मातीत, 21वें जन्म के बाद हम कर्मातीत बनेंगे, कर्मातीत बनेंगे, फिर क्या होगा, संपूर्ण, फिर करंट फुल बढ़ जाएगी और फिर व्यक्ति फिर बोलने की आवश्यकता नहीं रहेगी, फिर फरिश्ता बनके जहां भी हमको टच होगा, दुनिया में कहीं विनाश होगा, कोई आत्मा तड़फ रही होंगी, हम तुरंत जाकर उस आत्मा को मुक्ति, जीवन मुक्ति, जीवन मुक्ति दे देंगे सेकंड दृष्टि के द्वारा। ऐसे हम क्या बन जाएंगे, राजयोग द्वारा हमारे सारे विक्रम विनाश हो जाएंगे और फिर हम क्या होंगे, बाबा के साथी बनके, बराती बनके नहीं, कुछ बराती बनके जाएंगे, कुछ ग्राती बनके जाएंगे, है ना, हमें ना बराती बनना ना ग्राती बनना, क्या बनना है, साथी बनके जाएंगे, साथी बनके स्वर्ग में वापस आएंगे। ओम शांति।
इसी धुन का है बसेरा, मैं बाबा का, बाबा मेरा, मन में इसी धुन का है बसेरा, मैं बाबा का, बाबा मेरा, सुख शांति का मर्म सुनहरा, मैं बाबा का, बाबा मेरा,
ओम शांति। आप सबने अनुभव किया होगा पांडव भवन के इस भूमि पर बाप दादा शिव बाबा तो ज्ञान का सागर है, ब्रह्मा बाबा भी बाप समान बन गया है, पर बाबा के बच्चे भी कैसे लग रहे हैं, मास्टर ज्ञान सागर। हमारे डॉक्टर सतीश भाई ने बहुत गहराई से विचार सागर मंथन, ये सब जो फ्रूट है ना वो विचार सागर मंथन का है, समझा, तो इसलिए हर एक एक छोटी छोटी पॉइंट में विचार सागर मंथन किया है। जो आपने पहला ही पॉइंट बताया था कि अगर महान बनना है तो क्या करना पड़ेगा, महीनता में, ये महीनता है, तो आप सबको अच्छा लगा ना, अच्छा लगा, क्यों अच्छा लगा, आपको अगर कोई गेहूं दे दे तो खाना अच्छा लगेगा, लगेगा नहीं, क्या किया डॉक्टर साहब ने, आटा बना के, भून के, अच्छी रोटी बना के, हलवा बना के खिला दिया तो सबके गले में उतर गया, पर अभी हजम करना आपका काम है, है ना, आप हम सभी का काम है। ज्ञान हम दिन प्रतिदिन सुनते रहते हैं, पर ये डॉक्टर साहब मेरा एक सजेशन है कि लिख लो इन सब बातों को, लिख लो, है ना, अपने का फिर कभी बताएंगे, फिर कभी बताएंगे, तो कभी बताएंगे, तो मेरा सजेशन ऐसा है कि आप लिख ही लीजिए तो सबको उसका मतलब चिंतन जो है वो उसका लाभ सब लोग ले सकते हैं, तो इसीलिए बहुत बहुत धन्यवाद है, बहुत बहुत धन्यवाद। ओम शांति। हाँ जी।